शून्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री महादेव उवाच देव देव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः आद्यन्तावस्य जन्मध्याम् इदम् अन्यदहं बहिः जतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान् तवैव चरणाम्भोजाम् श्रेयस्कामा निराशिषः विसृज्यो भयतः सङ्गाम् मुनयः समुपासते त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितिसंयमाना आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेहन वस्तुभेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पः यस्माद्गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वां ब्रह्म केचिदवयन्तु तद्धर्ममेके एके परं सदसतः पुरुषं परेशं अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वाम् केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुर्विषयापि न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः जन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य मर्त्यादयः किमुत शाश्वत भद्रवृत्तः सत्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशम् भूते हितं च जगत भवबन्धमोक्षौ वायुर्जथा विशतिखं च चराचराख्यम् सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुंसे अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि जत्ते योषिद्वपुर्धृताम् येन सम्मोहिता दैत्यः पायिताश्चामृतं सुरः तद्दृक्षव आयातः परं कौतूहलं हिनः श्रीशुक उवाच एवमभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीराम् गिरिशं प्रत्यभासत श्रीभगवान् उवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षः सुरसत्तम कामिनां बहुमन्तव्यम् सङ्कल्पप्रभवोदयम् श्रीमहादेव उवाच श्री महादेव ने कहा देव देवा हे समस्त देवताओं के पूज्य जगत व्यापी हे संपूर्ण विश्व में व्याप्त जगदीशा हे जगन्नाथ हे जगन नियंता जगन माया हे विश्व स्वरूप सर्वेषां सबके अपि भी भावानां वस्तुओं के त्वं आप आत्मा अंतर्यामी हेतु कारण ईश्वर और नियामक हैं। भगवान शिव अपने समस्त समाज के साथ वैकुंठ पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए भगवान शिव का समाज कैसा है आप लोग समझते होंगे। उनके साथ पूरा कैलाश से गए थे उनके परिकर। जिस प्रकार भगवान शिव अयुक्त वेशभूषा में रहते हैं गड़बड़ वेशभूषा में रहते हैं ऐसे उनके वहां के परिकर भी वैसे रहते हैं। वो अपने स्वामी के देखा देखी वो राख लगाते हैं भस्म लगाते हैं और हड्डी धारण करते हैं और सभी पे ढंग है। किसी के शरीर में केवल पेट ही रहता है, पैर छोटा छोटा, हाथ छोटा छोटा है। किसी के एक पैर, किसी के पांच छह पैर, किसी का सिर बहुत बड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। भगवान शिव का ऐसा समाज है और सबकी जटाएं बढ़ी हुई, जटा बढ़ी हुई क्या, वो केस संवारते ही नहीं है सब। तो सब पहुंचे थे भगवान शिव के साथ, वहां उनका स्वागत हुआ। भगवान शिव का हार्दिक अभिप्राय था भगवान के उस मोहिनी स्वरूप को देखना, तो इसके लिए वे ये कहना चाहते हैं कि त्वयि किंचिन न आश्चर्यम चाश्चर्यम वयम वयम त्वाश्चर्य मानस। हे नाथ, आपके लिए तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े आश्चर्य मन वाले, मैं बड़ा कौतूहल हो रहा है, तो आप अपना वह रूप दिखाइए। इसके लिए भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री विष्णु को संबोधित कर रहे हैं देव देव। देव का अर्थ होता है पूज्य, आराध्य। इस संसार में हम लोग देखते हैं प्रायः लोग देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे अपना अभीष्ट पूरा करवाना चाहते, परंतु श्री महादेव जी कहते हैं भगवान के लिए कि आप देवताओं के देवता हैं, देवताओं के पूज्य। जिन देवताओं की पूजा सारा संसार करता है, वे देवता आपकी पूजा करते हैं, आपका भजन करते हैं। और देवताओं में तो सबसे बड़े भगवान शंकर हैं, इसलिए तो इनको महादेव कहते। तो महादेव का ये उद्गार दिया जा रहा है कि भगवान विष्णु देव देव हैं, देवताओं के भी पूज्य। श्रीमद् भागवतम में बहुत हाई क्लास के पुरुष बोले हैं, कोई भी विचार दिए। यहां पर भागवत हम लोग सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुन रहे हैं, अब महादेव जी से सुन रहे हैं। भगवान के गुणों का डायरेक्ट वर्णन इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली विशेषता भगवान की है कि वे देवताओं के भी पूज्य हैं। जब देवताओं के भी पूज्य हैं, तो क्यों नहीं मनुष्यों को चाहिए कि भगवान की ही पूजा करें, भगवान का भजन करें। कभी कभी महात्मा लोग कहते हैं कि एक कोई फकीर साधु गया बादशाह अकबर के पास कुछ मांगने के लिए, याचना करने के लिए गया। तो उस समय बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे खुदा से, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बार बार ऐसे हाथ करते थे। वो फकीर देखता रहा और जब तक वे नमाज नहीं पढ़ लिए तब तक रुका रहा। तो अकबर संकेत कर दिए थे कि रुके रहो, बैठे रहो। इसके बाद उठे, नमाज अदा करके पूरा करके पूछे कि कैसे आया, आपकी क्या सेवा करूं मैं। तो फकीर कहा, मैं आया था आपसे कुछ याचना करने के लिए, लेकिन मैं देखा कि आप स्वयं किसी से कुछ मांग रहे हैं। आप याचना कर रहे हैं, मैं तो चकित हो गया। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं भगवान से दुआ मांगता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमें सुख से रखें, हमारा धन वैभव बना रहे। तो ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। तो अकबर ने कहा, नहीं, आप तो कुछ मांगने आए थे। हम मांगने आए थे, लेकिन जब आप मांग रहे हैं अपने से बड़े से, तो उसी से मांगूंगा, अब आपसे क्यों मांगू। जब आप जैसे बादशाह की मांग को पूरा करता है तो सबसे अच्छा है कि मैं अब साक्षात उसी ईश्वर से मांगू। अकबर कहता रह गया कि नहीं नहीं मांगिए मांगे, कहा नहीं क्या मांगूंगा, मैं समझ गया कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया ये दाता एकदम राम है बाकी सब भिखारी हैं। इस प्रकार जैसे अकबर प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, और जबकि सामान्य मनुष्यों के लिए वो ईश्वर जैसे ही थे, मालिक थे, कंट्रोलर थे। तो इस प्रकार इस जगत के बहुत से ऑफिसर्स हैं, नियामक हैं, जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र या भगवान शिव, लेकिन ये लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु सबके ईश्वर हैं और वास्तविक ईश्वर वही देव देव संबोधन कर, आप देवताओं के भी देवता हैं। कितना सुंदर, कितना स्पष्ट विचार है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इन शब्दों को ग्रहण करना चाहिए कि जो शिव जी के भी आराध्य हैं, शिव विरंचि नुतम, तो क्यों नहीं ऐसे प्रभु की मैं शरण लूं। वही प्रभु हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। जीव की पहली जो विपत्ति है वो तो कर्म बंधन है, और कर्म बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। तो किसी भी जीव को कर्म बंधन से मुक्त करने का अधिकार केवल भगवान विष्णु को है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है, सूर्य वंश में एक बहुत तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद स्वर्ग में गए देवताओं की सहायता करने के लिए, क्योंकि उनको असुर तंग कर रहे थे। तो मुचकुंद महाराज गए, सेना नायक बनकर देवताओं की रक्षा किए, दैत्यों को परास्त किए, स्वर्ग लौटाए देवताओं को। लेकिन बाद में जब कार्तिकेय जी मिल गए, कार्तिकेय मिल गए देवताओं को सेनापति के रूप में, तो देवताओं ने मुचकुंद महाराज से कहा कि अब आप हमारी रक्षा से विरत हो जाइए, आपने बहुत परिश्रम किया है महाराज, आप हमसे वर मांगिए, हम स्वर्ग के राजा हैं, अधिकारी हैं, आप जो कुछ भी मांगना चाहे मांगिए। तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि यदि आप हमको दे सकते हैं तो हमें यहीं से भगवान के धाम में भेज दीजिए, मैं परिकर बनना चाहता हूं भगवान का, पार्षद बनना चाहता हूं। तो लोग कहा ओहो ये तो हमारे अधिकार से बाहर हम ये नहीं दे पाएंगे, यह तो केवल भगवान करते हैं। आगे आएगा श्लोक में भवबंध मोक्ष, भगवान ही संसार में बांधते हैं और संसार से मुक्त करने का अधिकार भी केवल भगवान का है। और ये वे उस जेलर या सुपरिटेंडेंट की तरह है जो केवल जेल की व्यवस्था देखता है, और जेल के भीतर छह लोग भगवान की आराधना करते हैं, और बाकी कम बुद्धि वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है जो जिसकी आराधना करे। तो सबसे कम बुद्धि के जो होते हैं वो मनुष्यों को खुश करना चाहते हैं, मनुष्य खुश रहे हम पर, मनुष्य खुश रहे। उससे भी कम बुद्धि के होते हैं वो कुत्ता बिल्ली को खुश करना चाहते हैं, सवेरे सवेरे कुत्ता लेकर के घूमने लगते हैं, सोचते हैं ये कुत्ता अगर खुश रहेगा तो मेरा जीवन बिल्कुल ठीक रहे और कुत्ता को टट्टी कराते हैं, ले जाते हैं। मैं अमेरिका के एक शहर में न्यू ऑर्लियंस में देखा कि एक व्यक्ति एक कुत्ता को लेकर घूम रहा था जंजीर में, और कुत्ता टट्टी किया तो उसे वो प्लास्टिक के बर्तन में रोक लिया। तो मैं तो देख करके बहुत चकित हो गया कि बाप रे बाप, ये इतने बड़े लोग एक कुत्ता का मल रोकते चल रहा है। तो मैं पूछा, मैं अंग्रेजी में पूछा कि व्हाई यू स्टोर्ड दिस स्टूल ऑफ डॉग, कैसे इसका मल ले ले। तो कहे कि यहां पर यदि कुत्ता टट्टी कर दे तो कुत्ता के मालिक पर $40 फाइन हो जाता है, तो इसलिए हम चल रहे हैं तो इसका लेकर घूम रहे हैं। तो बताइए, कुत्ता मास्टर हुआ कि कुत्ता वाला मास्टर हुआ, कौन सेवा कर रहा है? सेवा तो वो कर रहा है ना कुत्ता, तो ठीक इसीलिए गॉड के ठीक विपरीत डॉग रखा गया। डॉग सवेरे सवेरे गॉड के सामने प्रार्थना करनी चाहिए तो डॉग लेकर घूमने लगते और दिखाते हैं कि हम एडवांस्ड हैं, हम बहुत ब्रॉड बुद्धि के हैं, बहुत महान बुद्धि के हैं। महान बुद्धि कहो कि महान बुद्धू हो, बुद्धिहीन उससे तो वे लोग बहुत अच्छे हैं जो देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ गुण गाते हैं, वो लोग ठीक है। परंतु उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो सीधे भगवान की आराधना करते हैं, वे परम सत्य पर पहुंचे हुए। भगवान शिव इस सत्य का पर्दाफाश कर रहे हैं। आप जगत व्यापी कैसे, भगवान देवताओं के भी देव हैं इसलिए कि जगत व्यापी, व्यापी का अर्थ होता है जो वी आपी, आप शब्द का अर्थ होता है पहुंच, जिसकी सर्वत्र पहुंच है वो है सर्वव्यापी, सर्वत्र है। सृष्टि का ऐसा कोई एक अणु मात्र भी नहीं है जहां भगवान न हो। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, वे अंड के भीतर तो हैं ही, ब्रह्मांड के भीतर हैं गर्भोदकशायी के रूप में, परंतु वे परमाणु चय, चय का अर्थ है समूह, समस्त परमाणुओं में एक एक के भीतर भगवान अवस्थित। अपनी अद्भुत अनंत शक्ति से भगवान सर्वव्यापक, यह भगवान का एक गुण है जगत व्यापिन। और इस पर एक प्रश्न होता है, भगवान जगत के भीतर व्याप्त हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब इस जगत के वे कंट्रोलर नहीं रहे। जगत में व्याप्त हैं परंतु फिर भी वे अलग से इस विश्व के नियंता कंट्रोलर, इसका अर्थ होता है स्वामी, नियंता कंट्रोलर। श्रील प्रभुपाद जी बार बार अनुवाद किए हैं कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला। व्याप्त होने से ही कोई कंट्रोलर नहीं हो जाता है। मान लीजिए कोई कार में बैठा है, कार में व्याप्त है, लेकिन कभी कभी कार एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा कार का वो कंट्रोलर नहीं रहता है, बल्कि कार उसी को कभी कभी कंट्रोल कर देती है। बस दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, उसके भीतर रहता हुआ भी वो उसका पूरा कंट्रोलर नहीं। तो भगवान इस विश्व के कंट्रोलर हैं, किस चीज के, छोटी छोटी बातों को लेकर कर बड़ी से बड़ी बातों के वे नियामक। बड़ी बड़ी घटना से मेरा तात्पर्य जैसे सूरज का उगना, यह भगवान के आदेश में है, वो नियामक है, उन्होंने नियम बनाया है तुमको इस घंटे पर, इस मिनट पर, इस सेकंड पर यहां क्षितिज में आ जाना है। तो सूरज को आना ही है, असली सूरजस तपति मद भयात, भागवत के तृतीय स्कंध में कहते हैं सूरज मेरे भय से तपता है, इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है। यहां भय का अर्थ डर करने ही, भय का अर्थ है स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए। आनंद से सूरज तप रहा है लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि इसे मेरा अनुशासन मानना है। जितने बड़े लोग हैं वे सब अनुशासन में रहते हैं, नियम में रहते हैं। जितने भी बड़े से बड़े लोग, और छोटे लोग जो होते हैं वो नियम में नहीं रहते। जैसे सूरज समय से उग जाएगा, लेकिन देखते हैं मनुष्य समय से नहीं जगते हैं, क्योंकि वो तो कुछ है ना, कीट पतंग जब जगे या न जगे उनके जगने और सोने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। लेकिन सूरज कहीं ज्यादा सो जाए, एक दिन सोचे कि आज एक घंटा बाद में उगेंगे, उगने से तात्पर्य चाल से है। जैसे सूरज भगवान सोचे कि थोड़ा नाश्ता कर लें, रथ को रोक दें, अब एक घंटे के बाद ही चलेंगे, तो कितना बड़ा हेर फेर संसार में हो जाएगा। परंतु एक सामान्य मनुष्य वो 6 बजे के बदले 10 बजे जगे तो उससे क्या अंतर होने वाला, वो जगे या चाहे मर भी जाए तो क्या अंतर होगा संसार में, क्या क्षति होगी। और ऐसे एक व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए सूरज उग रहा है, हवाएं चल रही हैं, चंद्रमा उग रहा है, सीजन बदल रहे हैं, ये अकस्मात ऐसे भगवान न करें, लेकिन मान लीजिए यदि समस्त मनुष्यों का निधन हो जाता है तो इस सृष्टि में क्या कमी होगी, कुछ कमी हो जाएगी, सूरज का उगना बंद हो जाएगा कि हवा का चलना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, मेरे लिए विश्व बनाया गया है। सृष्टि में शुरू में तो कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे भरा गया मनुष्य और जीव सब भरे गए। तो भगवान नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। भगवान के इस नियंत्रित्व को ऐसे व्यक्त किया जाता है जैसे सूर्यस्तप्ति मद भयात, वातहवाति मद भयात, ये हवा मेरे भय से बह रही है, अग्नि मेरे भय से जल रहा है, सूरज मेरे भय से तप रहा है, वर्षा मेरे भय से हो रही है, मृत्यु मेरे भय से मार रहा है। तो बड़े बड़े कंट्रोलर जो इस विश्व के हैं उनका नाम लेकर के भगवान कहते हैं ये मेरे भय में है, तो फिर सामान्य जीव क्यों नहीं कंट्रोल में है। हम सब सूरज के अधीन हैं, हम सब वायु के अधीन हैं, वायु जिला रहा है, यदि वायु ना रहे तो कितना मिनट बिना सांस लिए रहेंगे, घंटा तो नहीं पूरा कर पाएगा कोई भी, है ना। मनुष्य में कोई ऐसा नहीं है कि जो एक घंटा तक बिना सांस लेके जीवित रह जाए। तो हवा के द्वारा भगवान सभी जीवों को कंट्रोल कर रहे हैं, पानी के द्वारा, आग के द्वारा, शरीर में आग है, आग न रहे तो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान कणकण में व्याप्त हैं, परंतु इसके साथ ही साथ वे सब कुछ के नियंता हैं, कंट्रोलर, जगदीश, और इसीलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। जगदीश का अर्थ है जीवों के ईश, समस्त जीवों के कंट्रोलर। यद्यपि जीव नहीं जानता है कि भगवान है या मैं किसी के कंट्रोल में हूं, लेकिन वो है। थोड़ी सी बुद्धि लगा करके देखे तो अपनी स्थिति का पता चल जाएगा कि वास्तव में वह नियंत्रण में है सब प्रकार से। तो छोटी छोटी घटनाओं के, छोटी छोटी क्रियाओं के भगवान नियामक हैं, और बड़े से बड़े के, जैसे वे, और जीवों में भी जैसे ब्रह्मा जी के नियामक हैं, चींटी के नियामक हैं, समस्त वस्तु, इसीलिए जगदीश कहा गया, सबके नियामक, सबके कंट्रोलर, जगन्मय। और इसके साथ ही साथ वे विश्व रूप हैं, जगत में जो कुछ भी है सब उनकी शक्ति का परिणाम है। भगवान की बहिरंगा शक्ति जगत के रूप में डिफ्यूज्ड हुई है, कोई भी वस्तु जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वास्तव में ये सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति का विकार हैं, और शक्ति शक्तिमान में अभेद है, अतः एक प्रकार से भगवान ही जगत के रूप में है। कहने का आशय है कि भगवान का जगत के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध है कि आप कह सकते हैं कि भगवान ही जगत के रूप में है। कहे हैं कि मैं यहां रहता हूं, कभी कभी आता हूं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, सब समय नहीं आते। तो कहा कि भगवान डायरेक्ट आकर के हमको कहेंगे कि यह करो तब मैं मानूंगा। तो मैं कह दिया कि संसार को तुम भोग रहे हो, सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, इसके लिए भगवान का आदेश है क्या? ये भगवान का आदेश लेकर क्यों नहीं सांस लेना चालू कर रहे हो? ये हवा तो तुम बनाए नहीं हो, भगवान ने बनाया है, तो सांस क्यों ले रहे हो, पानी क्यों पी रहे हो, खा क्यों रहे हो, इसके लिए क्यों नहीं सोचते हो कि भगवान का आदेश आएगा तब करेंगे? वो कह रहा था कि जब भगवान हमको डायरेक्ट कहेंगे कि मांस मत खाओ तो मैं नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा। या भगवान हमको डायरेक्ट कहेंगे कि ये माला लो और जप करो तब करूंगा। वे और जो भी काम है बिना भगवान के आदेश के करोगे, लेकिन भजन करने को जब भगवान डायरेक्ट कहेंगे तब करो। देखिए विचार, भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं। वास्तव में भगवान सूर्य रोज सवेरे उगते हैं, क्या भगवान का आदेश नहीं है कि जग जाओ जग जाओ? विभावरी शेष, विभावरी शेष हो गई, रात्रि बीत गई, उठो उठो, भगवान का नाम लो नाम लो नाम लो। प्रतिदिन सूर्य आदेश देता है और 12 घंटे की आयु हम का अपहरण कर लेता है, फिर 12 घंटे की रात आयु कट रही। समझदार आदमी समझ जाएगा कि वास्तव में जगत भगवान का उत्पन्न किया हुआ है और इतना जगत के साथ भगवान का संबंध है कि जगत को यदि कह दिया, भगवान को कह दिया जाए जगतमय, तो कोई असत्य नहीं है, जगन्मय। सर्वेषाम अपि भावानाम त्वमात्मा हेतुरीश्वर, समस्त भावों के, समस्त एग्जिस्टेंस के, समस्त सत्ता के, समस्त वस्तु अथवा जीवों के आप ही आत्मा हैं, आप ही कारण हैं और आप ही नियंता हैं। आत्मा का अर्थ है ज्ञाता, अंतर्जामी, किसी भी वस्तु के भगवान ज्ञाता हैं। एक एक के कण में, एक एक धूली कण के भी ज्ञाता हैं कि वो धूली कहां पड़ी है, उसका वजन कितना है और कब उड़कर कहां चली जाएगी, भगवान सब कुछ जानते हैं। बड़ी से बड़ी वस्तु के तो ज्ञाता हैं, सर्वेषाम अपि भावानाम, समस्त वस्तुओं के ज्ञाता हैं। और दूसरा, कोई जीव या देवता भी सब कुछ का ज्ञान नहीं रख सकता है, कहां कहां ज्ञान रखेगा? अपने घर में कितनी चीजें पड़ी रहती हैं, व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी दूसरा स्मरण दिलाता है कि अरे आपकी वस्तु वहां पड़ी हुई है, ये है वो। संस्कृत में कंठमणि न्याय है, कंठमणि न्याय का अर्थ है एक व्यक्ति के कंठ में मणि पड़ा था, लेकिन वो खोज रहा था अपने घर में, अलमीरा में, बक्सा में, घड़ा में, घर के कोने में, खूब हैरान था वो, हमारा मणि कहाँ चला गया, मणि कहाँ चला गया। उसका एक मित्र देखा और बताया कि वो तो आपके कंठ में है, तो मणि आपके कंठ में है, तो कहता हो कंठ में है। तो इतना बड़ा ज्ञान मनुष्यों को है और फिर भी कहते हैं वो भगवान है, वो भगवान है। बहुत सावधानी से बोलना चाहिए और विशेष करके हम वैष्णवों को बहुत सावधान रहना चाहिए किसी को भगवान कहने में। आजकल एक फैशन हो गया है गुरु को एकदम भगवान कह देना, यह बहुत बड़ा फैशन चला है। लेकिन वो जो गुरु को भगवान कहा जाता है वो उपचार में कहा जाता है, औपचारिकता कहते हैं उसको। उपचार का अर्थ होता है पूजा, सम्मान, आदर, आदर देने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव वो अर्थ नहीं होता है। अब भगवान को तो सब कुछ याद है, कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्च। गुरु ऐसा नहीं होता है कि उसको सब कुछ याद हो, भूत वर्तमान और भविष्य नहीं याद होता। प्रैक्टिकली देखना चाहिए, और न तो गुरु में अपार बल होता है, न सौंदर्य होता है, न धन होता है, अशेष सब चीज नहीं होता है। गुरु में क्या विशेषता होती है कि भगवान की कृपा का प्रकाशन उसमें होता है, इसलिए कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, हिज ग्रेस। ऐसा नहीं कहते हैं कि हिज ब्यूटी, हिज वेल्थ और हिज दिस हिज दैट, हिज ग्रेस का, भगवत कृपा का प्रकाशन गुरु में होता है। वो भी भगवान में जितनी कृपा है उतना नहीं हो सकता है। भगवान कृपा के अनंत समुद्र हैं, और किसी व्यक्ति में भगवान की वही कृपा जब उदित होती है तो उस कृपा से वह व्यक्ति कुछ जीवों का उद्धार करता है, भगवान के तरफ भेजता है, तो कहा जाता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान के प्रतिनिधित्व का वो एक अंश पूरा कर रहा है, भगवान के सौंदर्य को प्रेजेंट नहीं करता है, भगवान के बल को प्रेजेंट नहीं करता, भगवान के धन को, भगवान के जस को और को प्रेजेंट नहीं कर सकता, भगवान के कृपा को रिप्रेजेंट कर सकता है। यही सिद्धांत है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। तो ये समझना चाहिए भगवान भगवान है। यहां पर वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर बोल रहे हैं कि आप समस्त वस्तुओं के अंतर्जामी हैं, ज्ञाता है, और अंतर्जाम आत्मा का एक और भी अर्थ होता है, जितनी भी वस्तुओं में हम चेतना देखते हैं, हलचल देखते हैं, क्रियाएं देखते हैं, इसमें आत्मा कारण है, और वास्तव में भगवान आत्मा है, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। यदि भगवान इस पृथ्वी में न रहें तो एक भी तृण बढ़ नहीं सकता है, पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। इस शरीर में यदि चेतना न रहे तो ये शरीर बढ़ नहीं सकता है, केश नहीं बढ़ेंगे, नख नहीं बढ़ेंगे, शरीर जितना बढ़ा रहेगा वहीं पर बंद हो जाएगा। ऐ देवानंद क्या कर रहे हो, कुर्सी पर बैठकर सबको दिखा रहे हो समाधि। तो इस प्रकार भगवान उपस्थित है आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में, इसीलिए कोई वस्तु हरी भरी है, बढ़ रही है, जीवित है, बोल रही है, चल रही है, तो इसको समझते वस्तुओं के आत्मा कहते हैं। दूसरे कौन व्यक्ति है जो सबके भीतर प्रवेश करके और सब में जीवनी शक्ति दे रहा है, कोई है बताइए? कोई संसार में भगवान के अलावा है जो दूसरे जीवों में प्रवेश करके और उनको जिला रहा है, चेतना दे रहा है? कोई प्रश्न कर सकता है कि जीव के रहने भी से भी तो चेतना आ जाती है, तो जीव है क्या? ममई वांसो जीव लोक जीव भूता सनातन, वह जीव भी तो भगवान का एक छोटा सा अंश है, एक प्रकार से भगवान ही है जीव के रूप में, आत्मा कहते हैं। और हेतु, संसार में जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई है उनका कारण, उनका कारण भगवान है। कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है उसके कारण भगवान है। कोई कहे कि भूमि कारण है तो भूमि का कारण कौन है? भूमि भगवान ने दिया है, पानी भगवान ने दिया है। जैसे मैं यदि कहूं कि हमारा कारण, हमारे देह के कारण हमारे पिताजी हैं, लेकिन हमारे पिताजी के कारण कौन है? पता चलेगा कि पितामह कारण है। पितामह के कारण कौन है? प्रपितामह। अब इस तरह से पिता पितामहों की श्रृंखला को पीछे करते जाइए भाई, पता लगाने के लिए कि कौन ओरिजिनल है, कहां से चालू हुआ, तो अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जब गोविंद तक वो परंपरा जाएगी तो पता लगेगा कि गोविंद स्वयं सिद्ध हैं, उनका कोई कारण नहीं, बाकी सबके कारण। इसलिए सर्वे सामपि भावानाम तुम हेतु, तुम आत्मा हेतु। तीन बात भगवान शिव कह रहे हैं कि सब कुछ के आप ज्ञाता हैं, सब कुछ के आप जन्मदाता हैं, और सब कुछ के आप नियंता हैं, आपके कंट्रोल में। इस संसार में तो कोई नियंता होता ही नहीं। हमने देखा है किसी व्यक्ति का केवल एक पुत्र होता है और वो एक पुत्र भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। जन्मदाता तो है लेकिन कंट्रोलर नहीं है। वो पुत्र अपनी इच्छा से घूमता है, लोफर बनकर जहां तहां खाता पीता है, और वो पिता समाचार सुनाते समय हम लोगों से कहता है क्या कहे, मैं परेशान हो गया, उसको कुछ दीजिए, माला सिखाइए, भजन करे। तो उसने सृष्टि किया, पिता ने सृष्टि किया, परिवार बसाया, लेकिन वो परिवार उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। ऐसा जगत नहीं है कि भगवान सृष्टि किए हैं और अब भगवान के हाथ में दुनिया नहीं है, कंट्रोल से बाहर है उनके, ऐसा नहीं है। भगवान के ही कंट्रोल में संसार है, रहेगा, जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। भगवान के नियंत्रण में है प्रत्येक व्यक्ति का जन्मना मरना, खाना पीना, भूख प्यास, इधर जाना आना, जो कुछ भी है भगवान के अधीन है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कहीं पर, यानी भगवान ऐसे हैं कि उनको पता लगे कि यह ब्रह्मांड हमारे हाथ से निकल गया, चाहे यह व्यक्ति हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, ऐसा नहीं। सबको नियंत्रण में रख लेते। एक बहुत भयावह असुर हुआ था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, ब्रह्मा शिव आदि के कंट्रोल में भी नहीं था। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। भगवान प्रकट हुए खंभे से और एक मिनट में पूरा कंट्रोल कर दिए। जब किसी के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन भगवान पूरा शांत कर दिया, उसका पेट फाड़ करके, वक्षस्थल फाड़ करके, और पूरा कंट्रोल कर शांत हो। इस तरह से भगवान कंट्रोल, भगवान कंट्रोलर, ईश्वर। एक हास्य में एक छोटी सी घटना एक बार सुना था कि एक बार एक व्यक्ति बाइसिकल चला रहा था, साइकिल बाइसिकल चला रहा था, जिधर से आ रहा था वहां से कुछ ढलाऊ जमीन थी आ रहा था, तो उसके बाइसिकल में घंटी नहीं थी, बेल नहीं था, घंटी नहीं था, तो वो चिल्लाया बाइसिकल वाला, रोड पर ट्रैफिक पुलिस था, तो चिल्लाया कि हटो 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 हटो। तो वो ट्रैफिक पुलिस कहता है घंटी दो घंटी दो घंटी दो, तो वो कहता है हट जाओ, ब्रेक भी नहीं है। घंटी की बात करते हो, इस साइकिल में ब्रेक भी नहीं है। तो तब जाकर पुलिस धड़ाम जल्दी से जल्दी हटा, तो उसकी साइकिल पार की, तो वो साइकिल साइकिल वाले के कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि ब्रेक ही नहीं था। तो पुलिस डर करके किनारे हो गया, तब बच गया, नहीं तो उस दिन एक्सीडेंट हो जाता। वो कहता है घंटी दो घंटी दो, तो कहता है कि ब्रेक भी नहीं है, घंटी कहां से, तुम हट जाओ। तो ये तो मनुष्यों की दशा है, कोई कंट्रोल नहीं है। अरे विश्व को क्या कंट्रोल करेगा, मनुष्य के पास ऐसी इंद्रियां मिली हैं कि अपने देह में बसने वाली इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना है, आंख को कंट्रोल करना है, जीभ को। कभी कभी आदमी नहीं चाहते हुए भी बहुत खराब खा लेता है और उसके लिए परेशानी होती है। अरे क्या करें, जीभ के कारण खा लेते हैं, जीभ मानती नहीं, जीभ कंट्रोल में नहीं। कभी कभी आदमी नहीं चाहते भी क्रोध कर बैठता है। पूछते हैं लोग कि हमको क्रोध आ जाता है, इसके लिए क्या करूं। क्रोध आ जाता है और वाणी से बोलने लगते हैं, फिर हाथ में क्रोध आता है, पैर में क्रोध आता है, सर्व शरीर व्याप्त हो जाता है। तो जब अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं है, अपनी ही इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो, क्या जगदीश बनेगा आदमी? वो दूसरे को क्या नियंत्रण में रखेगा? प्रहलाद महाराज में हिरण्यकश्यपु में बातचीत हुई है तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी आपके मन में यह विचार है कि आप सारे विश्व को जीत लिए हैं, लेकिन हमारे समझ से आप कुछ भी नहीं जीते हैं। आप अपनी इंद्रियों को जीतिए तब मानूंगा कि विश्व विजेता है। इस पर वो हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गए, तुम जितेंद्रिय बन रहे हो? बहुत बहुत तरह से बोलने लगा उनको। उसने कह हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, पूछा कि तुम किसके बल से निर्भय हो, कहां से तुम्हारा बल आ रहा है? मैं क्रोध करता हूं तो देवता भी कांपने लगते हैं, और इस समय क्या कोई कंट्रोलर हो सकता है इस संसार में? तो ईश्वर कंट्रोलर है, अनादि काल से और अनंत काल तक भगवान विष्णु इस विश्व के व्यवस्थापक रहेंगे, कंट्रोलर रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, चाहे उनके विषय में नीचे से कुछ भी कहते रहिए, भगवान भगवान। कहने के लिए तो लोग हल्ला करते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है, लेकिन भगवान जैसा है वैसा तो रहेंगे, निराकार कहने से थोड़े उनका आकार खत्म हो जाएगा, वो तो हैं, जानकारी नहीं होने से निराकार 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 से रटते रहते, तो हैं भगवान। आद्यन्तौ अस्य जन्मध्यम इदम् अन्यदहं बहिः जतो व्ययस्य नैतानि तत् सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। अस्य आद्यन्तौ, आप इस जगत के आदि हैं और आप ही अंत हैं, अर्थात कहने का आशय यह है कि इस विश्व के निर्माण के पहले से ही आप विद्यमान हैं और यह विश्व समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी आप रहेंगे। दो अर्थ तो ये हुए, और तीसरे चौथे इसके अर्थ हैं कि विश्व आपसे निकला हुआ है और आप में समा जाएगा। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सारी भूमि जल अग्नि वायु आकाश और इन पंच महाभूतों से निर्मित सारा विश्व पहले भगवान में ही रहता है, उनके भीतर अव्यक्त रूप से, और फिर उन्हीं में समा जाता है। बीच बीच में सृष्टि होती है और सृष्टि का विनाश होता है। तो आप इस विश्व के आदि हैं और अंत हैं, और मध्य भी आप ही हैं। इस समय जो विश्व टीका है भगवान के भीतर है और भगवान की ही शक्ति है, जगत है, तो मध्य भी वही है। इदम अन्य, भगवान यह भी हैं और वह भी हैं। इदम है और अन्य, इसका क्या अर्थ है देखिए हैं टीका से। इदम अहंकारास्पदम दृश्यम, अहंकारास्पदम द्रष्टुम च, द्रष्टृ च बहिर्भोग्यम अन्यत् भोक्तृ च तत्सत्यम च चिद्रूपम च ब्रह्म। भगवान यह हैं और भगवान अन्यत हैं, भगवान अहम हैं, भगवान बहि ही हैं। इसका अर्थ है इस जगत में दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, दो प्रकार से एग्जिस्टेंस है इस जगत का। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, बहुत सी वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूं, सुन रहा हूं। दृष्टा का अर्थ केवल आंख से देखना नहीं है, अनुभव करने वाला। जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह रुमाल है, यह किताब है, यह, तो मैं दृष्टा हुआ और ये दृश्य हुआ। संसार में जो कुछ भी अनुभव में आता है वो दृश्य है और दृष्टा, तो दो प्रकार के सृष्टि से संसार भरा हुआ है, कुछ दृष्टा है कुछ दृश्य। जो दृश्य प्रतिदिन जैसे हमारे भोजन में, हमारे थाली में रोटी भात या सब्जी जो है वो दृश्य है और हम दृष्टा है, और वो है भोग्य और हम है भोक्ता। तो जो कुछ भी भोक्ता भोग दृष्टा दृश्य जो कुछ भी प्रपंच है, विश्व वास्तव में सबके कारण भगवान है, सबको उन्होंने उत्पन्न किया और एक प्रकार से वही है, भोग्य भी वही है भोक्ता भी वही है, समस्त वस्तुओं की सप्लाई भी भगवान किए हैं और जो इस जगत में जीव हैं वे भी भगवान की तटस्था शक्ति हैं। यह कहने का आशय है भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, ये भगवान शिव का विचार दिया जा रहा है। भगवान बाहर हैं भीतर हैं, तो यह प्रश्न होता है कि जब भगवान विश्व के रूप में हुए हैं, भोक्ता और भोग्य के रूप में, दृष्टा और दृष्ट के रूप में, तो फिर भगवान की सत्ता समाप्त हो गई होगी। जैसे कहीं पर मिट्टी का, मिट्टी की ढेर है, तो उस मिट्टी में से यदि घट बनाए, बर्तन बनाए, तो जितना घट बनाएंगे कुंभ बनाएंगे उतनी मिट्टी कम हो जाएगी। तो इतना विशाल जगत जब भगवान से निकला है तो भगवान तो खोखले हो गए होंगे, भगवान अब होंगे नहीं। तो इस पर कहते नहीं नहीं, भगवान एक अद्भुत व्यक्ति हैं कि इतना विश्व प्रपंच निकलने के बाद भी भगवान ज्यों के त्यों पूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत। भगवान से अनंत अनंत विश्व निकलता है लेकिन फिर भी भगवान जैसे के तैसे रहते हैं, न उनके वजन में कमी आती है, न आकार में, न बल में, न स्मृति में, किसी वस्तु में कमी नहीं आती। इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा भागवत में कथा है स्यमंतक मणि की। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान ने दिया था सत्राजित को। सत्राजित नाम का एक जादव था द्वारका में, भगवान सूर्य का भक्त था। द्वारका से कुछ बाहर सूर्य मंदिर था, वहां गया था पूजा करने के लिए। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर के उसको एक मणि दिया जिसका नाम था स्यमंतक मणि। तो स्यमंतक मणि को गले में धारण करके आ रहा था, तो इधर भगवान कुछ जादुओं के साथ विहार कर रहे थे, तो उन लोगों ने आकर कहा कि आपका दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। अरे प्रतिदिन देवता आते ही रहते थे लेकिन उस दिन बहुत चमक दमक आ रही थी, इसलिए लोगों ने कहा कि सूर्य आ रहा। तो भगवान हंसे कहे कि नहीं नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो सत्राजित है। स्यमंतक मणि के विषय में बात आती है, उस स्यमंतक मणि जहां रखा जाता था और उसकी पूजा जहां होती थी, तो उसके चारों तरफ है लगभग 80 किलो सोना पैदा हो जाता था प्रतिदिन। ये भागवत में मात्रा लिखी गई है। उस समय के हिसाब से बताया गया 85-86 शेर सोना। तो शेर पहले होता था, अब तो किलो हो गया। तो हम उसका हिसाब लगा कर कहते हैं लगभग 79-80 किलो सोना प्रतिदिन उत्पन्न हो जाता था। और मणि ज्यों का त्यों अविकृत रहता था, मणि के चमक में कोई कमी नहीं होती थी, उसके वजन में कमी नहीं, आकार में कमी नहीं। ये प्राकृत मणि की यह विशेषता थी। मणि ज्यों का त्यों है लेकिन फिर भी प्रतिदिन 85 शेर सोना पैदा हो जाता था। इसी कारण से तो उस मणि की चोरी हुई थी और अक्रूर जी चुरा करके उसे काशी ले गए थे और रोज यज्ञ कर रहे थे। बाद में घटना है, उसके चलते सत्राजित भी मारा गया, कौन कौन कई हत्याएं हुई, फिर सब धनवा मारा गया। ओके, वो सब कथाएं। तो मणि ज्यों का त्यों अविकृत रहता था, उसमें कोई खर्च नहीं, कोई कमी नहीं, और फिर भी उत्पादन हो जाता। तो भगवान भी इसी तरह से अव्यय रहते हैं, अक्षत रहते हैं, और फिर भी कई बार उनसे यह विश्व प्रपंच प्रकट हुआ है, कई बार सृष्टि होती रहती है, और भगवान अव्यय हैं, उनमें कमी नहीं होती है, जिम के तेम अपने धाम में लीला करते रहते। इधर तो मनुष्यों के शरीर में से अगर कुछ ब्लड निकाल दिया जाए तो कई दिन मुरझाए रहेंगे, तो व्यय हो जाता है। कोई है ऐसा जिसका जिसके शरीर से कुछ मांस चमड़ा निकाल लिया जाए और फिर भी वो अव्यय रहेगा? नहीं। और तो और छोड़िए, यदि आदमी मनुष्य खाया है पिया है सब किया है लेकिन रात को सो जाए और सवेरे 9 बजते व्यय हो गया, भूख लग जाती है, बाहर से कुछ नहीं डाला जाएगा तो पूर्णस्य पूर्णमादा नहीं हो पाएगा। जब कुछ बाहर से डाला जाता है तब कहता हाँ अब ठीक है अब काम करेंगे, नहीं तो भूख से मरने लगते हैं। भगवान इस प्रकार के नहीं, विश्व उनके भीतर प्रवेश करे तब भी उतना ही रहते हैं और विश्व निकले तब भी उतना ही रहते हैं। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। मान लीजिए किसी बैग में 100 किलो अन्न है, चावल भरा पड़ा है, और उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये हिसाब है कि 100 किलो बैग में चावल पड़ा है और उसमें आप 10 किलो निकाल लीजिए तब भी 100 किलो रहेगा, और उसमें 100 किलो और डाल दीजिए तब भी 100 किलो ही रहेगा। वहां का अद्भुत व्यवस्था है। तो भगवान को अव्यय कहा गया। जतो अव्यस्य नैतानि न एतानि, भगवान का न आदि है न अंत है, न इदम है न वह है, न बाहर है न भीतर है, वे अव्यय हैं, आप परम सत्य हैं, परब्रह्म हैं, और चिद ब्रह्म चिद भवान, आप चिन्मय हैं, कुछ भी आप में जड़ नहीं। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इस विश्व के कारण हैं तो इसलिए जब जड़ वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हो रही हैं तो भगवान भी जड़ हैं। नहीं, भगवान चिन्मय है, चिन्मय वस्तु से जड़ वस्तु उत्पन्न हो सकती है लेकिन जड़ से चिन वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कभी जड़ वस्तु से मैटर से उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु लाइफ से मैटर का उदय होता है। जब शरीर में चेतन शक्ति है तो इतना बड़ा शरीर बनता रहता है, चेतना से इसका निर्माण हुआ। भगवान से जगत निकलता है लेकिन भगवान चिन्मय। अतः तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः विसृजो भयतः संगम मुनयः समुपासते। इसलिए यह जान करके कि आप परब्रह्म हैं, परम ईश्वर हैं, जितने भी श्रेयस कामा कल्याण कामी महापुरुष जगत में हुए हैं आज तक, जिन्हें मुनि कहते हैं, जो मननशील हैं, थॉटफुल पर्सन, वे लोग निराशिषः संसार के भोगों की या मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं और वे आपकी उपासना करते रहते हैं, आपके चरण कमल का भजन करते हैं। तवैव चरणाम भोजम न तु अस्माकम चरणाम भोजम, वो आपके ही चरणों की उपासना करते हैं बड़े बड़े लोग, हम लोगों की उपासना नहीं करते। इसमें बात छिपी हुई है। तव एव चरणाम भोज चरणाम भोजम, आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं मुनिजन, जो दोनों प्रकार की आसक्ति से मुक्त है, उभयतः संगम, इस लोक के भोगों से भोगों की स्पृहा से मुक्त हैं और परलोक के भी भोग के स्पृहा से मुक्त, अथवा भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार की जिनकी वासना नहीं रहती है, वे श्रेष्ठ कोटि के महापुरुष जन भक्त जन आपके ही चरण कमल की आराधना करते हैं, और बाकी जिनके हृदय में बहुत बहुत कामना होती है, बहुत भोग की लालसा होती है, वे लोग हम लोगों की और की आराधना करते रहते।
भगवान शिव बहुत स्पष्टवादी हैं, बता रहे हैं कि आपकी उपासना भोगों से मुक्त पुरुष करते हैं। निराशिषः और विसृज्य उभयतः संगम। निराशिषः और इसका अर्थ लगभग एक ही है, निराशिष का अर्थ है भोग वासना शून्य और उभयतः संगम निरस्य। उभयतः का अर्थ सिर्फ श्रीधर स्वामी कहते हैं इहा मूत्र च संगम संत्यज्य त्यक्त्वा। दो प्रकार की आसक्ति मनुष्य के हृदय में रहती है, वासनाएं रहती है। एक तो इस जन्म में सुखी होने की, मुझे धन हो जाता, मेरे स्वजन बहुत होते, मैं ऊंचे पद पर हो जाता, मेरा ये हो जाता वो हो जाता। और कभी कभी विवेक होता है तो आदमी सोचता है कि ये जीवन तो क्षण भंगुर है, तब मन में होता है कोई बात नहीं, स्वर्ग में जन्म मिले तो अच्छा है, तो उस जन्म में संसार को भोगेंगे। इसको उभय संग कहते हैं, आसक्ति। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं संसार में और श्रेयस कामी होते हैं, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान का पार्षदत्व चाहते हैं, वे लोग आपकी ही चरण कमल की आराधना करते हैं। देखिए श्लोक में लिखा है तव एव। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुनि जन आपकी ही उपासना करते हैं, न तु अन्यस्य, अन्य की उपासना नहीं करते हैं। तो उसमें भगवान शिव एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि हमारी उपासना नहीं करते हैं वो लोग, और जब हमारी उपासना नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी और इंद्र और आदमी की क्या करेंगे, वो आपकी उपासना करते हैं। बहुत स्पष्ट विचार है। तथा एवं भूतत्व मुमुक्षुणाम आचार प्रमाणम इति। इस श्लोक के उपक्रम में कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, इसको कैसे कहा जा सकता है? ऐसे कहा जा सकता है कि आज तक जितने भी मुमुक्षु हुए हैं, जो जन्म मृत्यु से छूट करके वैकुंठ जाना चाहते हैं, वे मुमुक्षु जन जो भोगों में लिप्त नहीं है, उनका प्रमाण ही, उनका आचरण ही प्रमाण है। उन्होंने आचरण यही किया है कि आपका भजन किया है, तो आपकी यह महिमा है। तब तो भक्तजन आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। ननु ब्रह्मैव चेदहं सर्वसंगो उदासीनस्य मम चरणं भोजोपासनाय किं तेषां। यदि भगवान मान लीजिए यह कहें कि आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के विषय में तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म उदासीन है, तो भजन करने वाले की वो इच्छा पूरा करेगा नहीं। जब उदासीन है और असंग है, तब भगवान शिव कहते हैं कि आप परब्रह्म है, भगवान है, फिर भी देखा गया है कि आपकी शरण लेने वाले की इच्छा को आप पूरा करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उससे आप प्रेम करते हैं, उस बात को कह रहे हैं। त्वं ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम अविकारम अनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुरुदय स्थिति संयमाना आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया नपेक्ष। निश्चित ही आप ब्रह्म है। कैसे वर्ण है? पूर्ण ब्रह्म, पूर्णम ब्रह्म, अमृतम, आप अमृत हैं, न अमृतम। अमृत के दो अर्थ हैं, आप परम आस्वाद्य हैं जीवों के लिए, आप परम सुख हैं, सुख को अमृत कहा जाता है, आप सुख स्वरूप हैं, परमानंदमय हैं, और इसके साथ ही साथ आपके लीला गुण नाम स्वरूप आदि का कभी मरण नहीं है। तो इसको अमृत, अमृत का दो अर्थ होता है, एक तो बहुत स्वादिष्ट वस्तु, स्वादु वस्तु, और दूसरा है नित्य वर्तमान वस्तु, अमृत। भगवान का नाम, गुण, चरित, धाम, परिकर जितने भी हैं सब अमृत। परंतु देवताओं के पास जो कुछ भी है, देवताओं का शरीर, नाम, रूप, उनका परिवार या मनुष्यों का, सब एक न एक दिन मर जाता है, सब मृत है। वर्तमान समय में भी मरा हुआ है, जड़ है, और एक न एक दिन तो परिवार बिखर जाता है, देह मर जाता है, स्मृति चली जाती है, नाम भी मिट जाता है। किसी व्यक्ति से मैं पूछूं कि आप अपने पितामह के पिताजी का नाम बताइए, तो शायद ही किसी को याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नाम मिटा कि नहीं? नाम मिट गया ना, रूप भी मृत हुआ, नाम भी मृत हुआ। लेकिन भगवान का सब कुछ अमृत है, वो कभी मिटने वाला नहीं। ये कृष्ण नाम आज का नहीं है, और भगवान जब मथुरा में प्रकट हुए, ब्रज में आए, उसी समय का नहीं है, अनादिकाल से उनका यह कृष्ण नाम है। वो तो गर्गाचार्य के मुख से प्रकट हुआ, जैसे भगवान देवकी जी के गर्भ से प्रकट होते हैं, तो भगवान का नाम भी गर्गाचार्य आदि महानुभावों के मुख से प्रकट होता है। इंद्र के मुख से गोविंद नाम प्रकट हुआ, गर्गाचार्य के मुख से हरि, वासुदेव और कृष्ण नाम प्रकट हुआ, प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का नया नाम पड़ता है। हम लोगों का जो कुछ भी नाम है, वर्मा शर्मा, ये सब नया है, शुरू में नहीं रहता और बाद में भी सब मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब इसी जन्म में मिटा करके दास टाइटल लगा दिया जाता है। ये दास टाइटल अमृत है, ये रहेगा अनंत काल तक, हम लोग भगवान के दास बने रहेंगे। यह दास जो टाइटल है वो क्षणभंगुर नहीं है, यह अमृत है, और जो स्वरूप है जीव का वह भी अमृत। भगवान का सब कुछ अमृत, अमृतम। विगुणम, विगुणम का अर्थ है प्रकृति के गुणों से पार। विशोकम, भगवान में कभी भी कोई शोक नहीं है, कभी भी किसी भी काल में, किसी साल, किसी महीने में, किसी दिन भगवान में कोई शोक नहीं। और मनुष्य कौन ऐसा है जिसमें कभी ना कभी शोक ना हो? कभी ना कभी क्या, हर्ष कभी कभी होता होगा, आनंद का अनुभव मनुष्य कभी कभी करता है, बाकी तो शोक ग्रस्त सर्वदा रहता है। लेकिन भगवान में कभी शोक नहीं है। अथवा विशोक का अर्थ यह है कि भगवान की शरण लेने पर जीव का शोक दूर हो जाता है। तो अपने आप में वे कितना शोक रहित, अर्जुन रो रहे थे कुरुक्षेत्र में, उतने बड़े राजा के पुत्र होकर के, परम धर्मात्मा युधिष्ठिर के भाई होकर के रो रहे थे, हा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान बार बार कहते हैं, मां सुच, शोक मत करो, जैसे मैं खुश हूं ऐसे खुश रहो, तू क्यों रो रहे हो? शरीर तो नस्वान है ही, जाएगा, आत्मा अजर है, अमर है, लड़ो, अपने काम करो, क्यों शोक कर रहे हो? भगवान पूछते हैं गीता का उपदेश करके कि अब ठीक हो गए, शोक दूर हो गया? तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह, हाँ मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, त्वत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि, गत्संदेहो करिष्ये वचनम तव। भगवान समझा बुझा करके तब उनको विशोक किए। तो मनुष्य का स्वभाव है कुछ न कुछ शोक करना। एक बार मैं हाउस प्रोग्राम में प्रीचिंग करने गया था, मुझे याद नहीं किस स्थान पर, तो एक व्यक्ति बड़ा शोक में था। जैसे कथा कहते समय मैं समझ रहा था कि कुछ चिंता में, तो मैं पूछ दिया, आपको क्या शोक है, आपको किस बात की चिंता है? तो वो बेचारा सत्य सत्य बोला, कहा कि हमको इस बात का शोक है कि आप कितना देर कथा कहेंगे, कब खत्म करेंगे, हम यही शोक में पड़े हुए। ऐसे कहा। और उसको ये शोक था कि मेरा प्रवचन उसे कल्प जैसा लग रहा था कि कब हम समाप्त होगा। तो मैं कहा कि ये क्यों कह रहे हैं, जल्दी खत्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो कहा कि हमको जल्दी जाना है एक जगह पर, कोई काम बताया। वो कथा सुनने आया था आनंद के लिए, कथा के कारण ही शोक हो रहा था उसको। ऐसे कभी कभी श्रोता होते हैं कि वो उनको दो दो ढाई घंटे की कथा एक कल्प जैसा व्यतीत होता है, वो शोक हो रहा है। कथा सुनने वाले भी भिन्न भिन्न आशय के होते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार कथा कहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा कथा कह रहा था और दूसरा व्यक्ति सुन रहा था। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग कथा सुन रहे थे, एक व्यक्ति अंत तक बैठा रहा और सब लोग धीरे धीरे चले गए, लेकिन अंत तक बैठा रहा। तो कथाकार कहे, धन्य है आप, आपकी कथा में बहुत रुचि है, निष्ठा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे कथा के किस बात से आपके हृदय में इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि श्रवण रुचि नित्य नवीन होती जा रही। वो कहा कि महाराज जी, जिस आसन पर आप कथा कह रहे हैं वो मेरा कंबल है, और मैं सोचता हूं कि आप कब उठेंगे कि मैं कंबल लेकर के जाऊं। तब तो ये आनंद है। तो वो कथा की निष्ठा ये थी कि वो कंबल के लिए बेचारे बैठे हुए थे और पंडित जी भ्रम में थे कि ये कथा रसिक हैं। कभी कभी ऐसे भ्रम होता है। और कभी कभी कथा में ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रोज कथा ना सुने, एक दिन सुना, आधा सुना, ये सुना, तो उसे नहीं समझ में जब कथा आती है तो उस विषय पर एक दृष्टांत कहते हैं महात्मा लोग। एक बार एक पंडित जी एक गांव में कथा कहने आए, कथा कहने आए तो दो महीने कथा चली, रामायण की कथा थी। खूब लोग जुटे, खूब आनंद लिए, पंडित जी की विदाई हुई, पंडित जी जाने लगे, जाने की तैयारी में थे, चल दिए थे कुछ दूर। तब तक गांव के लोगों में आपस में एक बात के लिए विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई कथा तो बहुत अच्छी हुई, बड़ा आनंद आया, लेकिन हमको ये पता नहीं चला कि राक्षस राम था कि रावण था। ये थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। तब तक उन लोगों ने कहा, अरे पंडित जी अभी निकट ही गए हैं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, शंका समाधान कर लो। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी जब आए तो बैठाया गया, पंडित जी बड़ा आनंद दिया आपने, दो महीना कथा सुनाया, बहुत धन्य हो गए हम लोग। लेकिन पंडित जी एक शंका रह गई, वो बात समझ में नहीं आई कि जो आप राक्षस दस सिर वाला कह रहे थे वो राम था कि रावण था। तो पंडित जी कहते, राक्षस मैं था जो दो महीना मरा यहां पर। तो इस तरह से पंडित जी उन लोगों की सारी दक्षिणा फेंक करके और बड़ा अफसोस करते हुए चले गए कि बाप रे बाप, ऐसे श्रोता रहे। दो महीने समय बर्बाद किया। किसी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य सावधानी से सुनता है, ध्यान दे करके, तो समझ सकता है। तो गांव में कथा लोग सुनते थे, दिन भर काम करके आते थे, शाम को कथा में सोते थे, और क्या समझे। मैं शोक पर ही कह रहा था बात कि मनुष्य किसी न किसी बात के लिए शोक करता रहता। तो कथा के समय वो व्यक्ति कंबल कब प्राप्त हो इसके लिए शोक कर रहा है। तो पंडित जी हटेंगे तो अपना आसन बना हुआ कंबल ले जाओ। जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए शोक होता है तो और कहीं रास्ता चल रहा है आदमी शोक होता है, कार में बैठा है पर शोक में जाता, रात में सोता है तो सपना में भी शोक करता रहता, किसी दिन सपना भी कम से कम देखे कि आज बड़ा आनंद में हूं, कीर्तन गा रहा हूं, भागवत पढ़ रहा हूं, आनंद में हूं, कोई चिंता नहीं है, कम से कम सपना में भी तो ऐसा होना चाहिए। भगवान सदा आनंदमय है और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो उनका उनसे संपर्क जोड़ता है, उनका भजन करता है, वह भी शोक रहित हो जाता है, उसका शोक दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण को देखिए कहीं भी वे हंसते रहते हैं, सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि भगवान को कोई चिंता है नहीं, भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, विशोकम और आनंद मात्रम। मात्रा का अर्थ होता है देह शरीर, भगवान का शरीर केवल आनंदमय है, आनंद के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है उसमें। यदि कोई पूछे कि भगवान का शरीर किस चीज से बना है तो यद्यपि वो बना नहीं है, वो अनादिकाल से है, परंतु कहा जा सकता है कि भगवान का आनंद, भगवान का शरीर आनंद से बना है बस। और वो आनंद कैसा है, वो ज्ञानमय है, चिन्मय है और नित्य है, सत चित आनंद सच्चिदानंद। भगवान के शरीर में आनंद के अलावा और कुछ नहीं, और वो आनंद नित्य है तथा चिन्मय है, सत्य है और चिन्मय। अतः जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वह भी सच्चिदानंदमय हो जाता है। अविकार, भगवान के शरीर में या लीलाओं में कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। अनन्यत दन्यत अनन्यत, भगवान अनन्यत है, भगवान जिस भगवान का शरीर ही भगवान है और हम लोग शरीर नहीं हैं। हम लोग तो अपना परिचय देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे आप कौन हैं, तो मैं अपने शरीर के बारे में बताऊंगा कि मैं यह हूं। यदि कोई पूछे आपका जन्म कब हुआ तो मैं जन्मदिन बताऊंगा, लेकिन मैं तो बहुत पहले का हूं, न जायते मृते वा कदाचित, तो शरीर का परिचय देते। परंतु भगवान अनन्यत है, देह देही विभाग भगवान में नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का देह कुछ भिन्न है और भगवान नामक चेतन तत्व भिन्न है, नख से सिख तक चिन्मय है भगवान। और अन्यत, वे अन्य समस्त जीवों से, देवताओं से सबसे भिन्न है, इस विश्व से भिन्न है। विश्वस्य हेतु हृदय स्थित संयमानम आत्मा ईश्वरश्च, विश्व की सृष्टि के उदय के, विश्व के उदय के, सृष्टि के, पालन के और प्रलय के सब समय आप ही ईश्वर हैं, आप ही ज्ञाता हैं और आप ही ईश्वर। और तदपेक्ष तयानपेक्ष, इस पर प्रश्न होगा कि भगवान जो जीवों के नियामक हैं, मालिक हैं, तो क्या जीवों से कुछ उनकी अपेक्षा है? इस संसार में आप देख सकते हैं कोई राजा होता है या सरकार होती है, बहुत सी जनता भी होती है, तो सरकार जनता से टैक्स लेती है, कुछ सरकार को अपेक्षा होती है जनता से, राजा को भी अपेक्षा होती है। राजा बल्कि प्रजा की कृपा से जीता है और प्रजा राजा की कृपा से जीती है, तो अपेक्षा राजा को होती है। तो भगवान क्या इन जीवों से कुछ अपेक्षा रखते हैं इसलिए सृष्टि करते हैं? नहीं, अनपेक्षत है। भगवान कुछ प्राप्त करने के लिए सृष्टि नहीं करते हैं, या प्रलय या व्यवस्था, ये सब जीवों के हित के लिए भगवान करते हैं, उनको कुछ नहीं घट गया है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए भगवान गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के बैकुंठ में कुछ नौकर चाकर घट गए हैं इसलिए शरण में लेकर ले जाना चाहते, नहीं। जीवों के हित के लिए भगवान बोल रहे हैं, अनपेक्ष है, परिपूर्ण है। यहां पर कोई भी मालिक है वो दास दासी रखता है, नौकर रखता है, तो क्या नौकरों के सुख के लिए रखता है? नहीं, उसकी अपनी अपेक्षा होती है। फैक्ट्री का मालिक है तो वो कुछ चाहेगा ही काम करने वाला, उनके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता, तो उनकी अपेक्षा होती है। और दासों को भी अपेक्षा होती है मालिक की। भगवान अनपेक्ष हैं, जीवों में अपेक्षा रहती है। भगवान बारंबार सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, जगत की व्यवस्था करते हैं, तो कोई सोच सकता है कि भगवान को भी कुछ कमी हो जाती होगी, इसीलिए सब सृष्टि करते हैं, ये करते हैं। नहीं, वे पूर्ण।
एकस्त्वमेव सद सद द्वयम द्वयम च स्वर्णम कृताकृतमिवेहन वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो जस्माद् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्य।
आप ही सद हैं, आप ही असद हैं, आप ही कारण हैं, आप ही कार्य हैं, आप ही कार्य हैं, आप ही कारण हैं। आप जगत की वस्तुओं से भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, परंतु वास्तव में आपके अतिरिक्त कुछ भी दूसरा नहीं है। जैसे कहीं स्वर्ण पिंड हो, सोना का बड़ा सा चट्टान हो, और उस सोने से अनेक प्रकार के गहने आभूषण गढ़ दिए जाएं, आभूषण का आकार और नाम और वजन भले भिन्न हो जाए लेकिन वह सोना ही रहता है, सोना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नाम कुंडल हो जाए, कंकड़ हो जाए, नूपुर हो जाए, लेकिन वह सोना ही रहता है। उसी प्रकार इस जगत में वस्तुओं का नाम चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य, देव, वृक्ष, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, भिन्न भिन्न नाम हो जाए, लेकिन हे प्रभु सब आपके ही स्वरूप हैं, अर्थात सब आपके ही बहिरंगा शक्ति के उत्पादन। वस्तु भेद नहीं है। अज्ञानतस्त्वयि जनैर् विहितो विकल्पो जस्माद् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्। अज्ञान से लोग ऐसा मानते हैं कि जगत का भगवान से कोई संबंध नहीं है, जगत स्वतंत्र है, ये है वो है, और ये भी मानते हैं कि मैं ही जगत का ईश्वर हूं, मैं मालिक हूं, मैं भोक्ता हूं, लेकिन वास्तव में आप ही स्वामी हैं, आपकी ही शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है। जैसे अकृत और कृत सोना में कोई स्वर्ण की दृष्टि से भेद नहीं, आप निरुपाधिक हैं, मायाहीन हैं, फिर भी आपके द्वारा ही गुणों में व्यतिकर होता है, गुणों के प्रकृति के गुणों में विषमता होती है और सृष्टि होती है। बहुत दुरूह श्लोक है, इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव वैकुंठ में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। नियम यह है कि किसी व्यक्ति के पास कोई अतिथि जाता है तो वह गृहस्थ अतिथि का गुण गाता है, प्रशंसा करता है, सेवा करता है, परंतु यह आप देख रहे हैं कि भगवान शिव अतिथि बने हैं भगवान के और वहां जाकर उनका गुण गा रहे हैं। इसका कारण यह है कि गेय या कीर्तनीय भगवान है, कीर्तनीय सदा हरि, हरि ही कीर्तनीय, कीर्तन करने योग्य, अर्थात उन्हीं की कीर्ति गाने योग्य। भगवान शिव गा रहे हैं। इसी से विद्वान लोग आपको बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जैसे भगवान इस जगत के रूप में भी हैं, जगत से भिन्न भी हैं, अनपेक्ष हैं, फिर भी सृष्टि करते हैं, परिपूर्ण हैं, फिर भी सृष्टि करते हैं। अतः आपको विद्वान लोग बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। अतएव त्वाम बहुधा वर्णयन्ति तत्वतस्तु केपि न जानन्ति इत्याह। भगवान शिव कहते हैं श्री हरि से कि आपके गुण अनंत हैं, इसी से लोग आपका बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं, पर वास्तव में आपको तत्व से कोई नहीं जानता है। मतलब तत्व का अर्थ पूर्ण रूपेण आपको कोई नहीं जानता है। अतः वे आपके एक देशीय गुण को देख करके आपको भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? त्वाम ब्रह्म के चिदवयं तुत धर्म में के, कोई कोई आपको ब्रह्म कहते हैं, वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, वेदांती न। यहां श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, त्वाम ब्रह्म वेदांतिनो अवयन्ति मन्यन्ते। वेदांत अर्थात वेदों के उपनिषद भाग को पढ़ने वाले सुनने वाले लोग आपको ब्रह्म कहते हैं। हमें ब्रह्म शब्द का अर्थ समझना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, व्यापक और अप्राकृत, चिन्मय सत्ता, इसको ब्रह्म कहते हैं। तो वेदांती लोग केवल भगवान के प्राकृतत्व का निषेध मात्र करते हैं, नेति नेति कहते हैं। जैसे कहते हैं भगवान भूमि नहीं है, जल नहीं है, भगवान मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, भगवान इन सब प्राकृत प्रपंचों से परे हैं। तो भगवान का प्रकृति से अतीत रूप ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ निराकार नहीं होता है, या ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष नहीं होता है। और निर्विशेष शब्द का भी अर्थ समझना चाहिए, विशेष का अर्थ होता है भौतिक प्रपंच, और निर्विशेष का अर्थ होता है भौतिक प्रपंच से परे। भगवान अपने दिव्य धाम में क्रीड़ायमान रहते हैं, लीला करते हैं, तो उनको ब्रह्म कहते हैं। और बृहद अर्थ लिया जाए तो भगवान का रूप बृहद है, अनंत है, अपरिसीम है, उनके गुण अनंत है, इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। तो वेदांती लोग भगवान को ब्रह्म कहते हैं, आपको ब्रह्म कहते हैं। और कुछ जो मीमांसक हैं, जो वेदों के कर्मकांड में रुचि रखते हैं, वे आपको धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है जैसे यज्ञ स्वरूप, वे मानते हैं कि आप यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ करेंगे तो हम स्वर्ग पाएंगे, यह पाएंगे, वह पाएंगे। कर्मकांड में आसक्त रहने वाले लोग आपको धर्म मानते हैं। तथा सांख्य शास्त्र को मानने वाले लोग आपको सत और असत से परे ईश्वर मानते हैं, प्रकृति और पुरुष से श्रेष्ठ, जीव और प्रकृति दोनों से परे पुरुष के रूप में आपको स्वीकार करते हैं। और अन्य पांचरात्रा, जो लोग नारद पांचरात्र को मानते हैं या भागवत परंपरा में हैं, वे आपको नौ शक्तियों से युक्त परम ईश्वर मानते हैं। इसी कोटि में सब भक्त जन होते हैं। नव शक्ति युतम परेशम परम ईश्वर, नव शक्ति युतम परम ताम, और केचित महापुरुषम अव्ययमात्म तंत्रम। और पातंजल संप्रदाय के लोग जो योग में रुचि रखते हैं, वे लोग आपको महापुरुष कहते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, जिसने भगवान के जिस विशेषता का साक्षात्कार किया है वह वही कहता है। इसके विषय में एक कथा कही जाती है कि एक बार कुछ अंधे रास्ता पकड़कर जा रहे थे, तब तक उनको एक हाथी मिला। हाथी मिला तो एक ने हाथी के पूंछ को टच किया, तो पहले हल्ला हुआ कि हाथी है हाथी है हाथी है, तो जिसने केवल हाथी के पूंछ को टच किया वो कहा कि हाथी रस्सी जैसा है, और किसी ने ऐसे छुआ हाथी का कान देखा तो वो कहा कि हाथी सूप जैसा है, सूप है इधर जो अनाज को फटकते हैं इसे साफ करते हैं हम लोगों के यहां उसको सूप कहते हैं, सूप कहते, तो किसी ने कहा कि सूप जैसा, और किसी ने हाथी के पैर को छुआ तो कहा नहीं नहीं ये खंभा है ये पिलर जैसा होता है हाथी, और किसी ने सूंड पकड़ा किसी ने कुछ पकड़ा, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वे आइडिया दिए पर सब थे अंधे। और एक आंख वाला व्यक्ति था वो कह रहा था कि नहीं नहीं ये हाथी का पैर है, हाथी पैर नहीं है ये हाथी का पैर है वही स्तंभ जैसा खंभा जैसा दिख रहा है, और ये रस्सी नहीं है हाथी, हाथी की ये पूंछ है। तो नौ शक्ति जूतम वाला आंख वाला था, जो आंख वाले हैं जो पंचरात्र मानने वाले अर्थात श्रुति स्मृति के अनुसार जो भगवान को इस विश्व के ईश्वर के रूप में जानते हैं, वे जानते हैं कि भगवान में नौ शक्तियां हैं ऐसे परिपूर्ण। देखिए भगवान में नौ शक्तियां कौन कौन हैं, भगवान शिव के मुख कमल से प्रकट हो रहा ये बताया गया है एक जगह पर, विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी सत्या ईशाना अनुग्रहा, ये भगवान की नौ शक्तियां। पहले तो हम लोग नाम सुन रहे हैं, इसकी व्याख्या थोड़ी थोड़ी सुनेंगे। भगवान से वो भिन्न नहीं है, एक है शक्ति विमला। विमला का अर्थ है भगवान सदा ही अज्ञान से परे हैं, मल से परे हैं। किसी भी जीव के लिए मल क्या है? अविद्या। किसी चीज की जानकारी न होना यह है अविद्या, और अविद्या को ही मल कहा गया। भगवान ऐसे हैं कि सदा वे ज्ञान घन बने रहेंगे। यदि हमसे कोई पूछे कि एक वर्ष पहले आप इस तारीख को आप 3 दिसंबर को इसमें कहां थे, तो हमारी स्मृति शक्ति बहुत पीछे नहीं जा रही है और आगे भी नहीं पहुंच रही है। वर्तमान में भी मेरी दृष्टि दूर तक नहीं देख सकती, कान बहुत दूर तक नहीं सुन सकते, बहुत बातों का स्मरण नहीं है, लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो किसी काल में नहीं बंधा है। अनादि काल की सारी घटनाओं को एक एक सेकेंड में जो हुई है सब भगवान जानते हैं, और अनंत काल तक जो कुछ होगा वे सब जानते हैं। वर्तमान में वे सबके हृदय की तरंगों को जानते हैं, सब कुछ का उन्हें ज्ञान है। भगवान की इस शक्ति को विमला शक्ति कहते हैं, मल नहीं है, नित्य ज्ञान में। जैसे सूर्य नित्य प्रकाशित वस्तु है और अनंत दूरी पर अर्थात करोड़ों करोड़ों माइल तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है और वहां की वस्तुओं को देख रहे हैं समझ रहे हैं, तो भगवान का ज्ञान अबाधित है, इसलिए भगवान को कहते हैं विमल, मल रहित, सब कुछ जानते हैं। जीव कोई भी ऐसा नहीं है। ये जो नौ शक्तियां भगवान की सुन रहे हैं इसके और भी अवांतर भेद हैं बहुत से, परंतु इन नौ शक्तियों में एक भी शक्ति जीव में नहीं है, विमला शक्ति है। भगवान के गुणों को हम लोग सुन रहे हैं इस भागवत सप्ताह में, इसलिए धैर्य से सुनना चाहिए। भगवान की विशेषता बताने चलेंगे तो ये सब बातें बतानी चाहिए। हम लोगों में लोग कहते हैं प्रीचिंग करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, तो प्रीचिंग मतलब भगवान का वर्णन करना है। कृष्ण प्राप्ति है जहां है तो कृष्ण का वर्णन करना चाहिए। भागवत के अनुसार श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम, भगवान विमल, उनमें अज्ञान का लेशाभास भी नहीं है। कहीं भी कुछ भी अज्ञात नहीं है भगवान के द्वारा। अब इस बात को भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, केवल शास्त्रों से सुन करके विश्वास करते हैं। किस तरह से भगवान सभी चीज को जानते हैं, जब हम जान जाएंगे तब तो समझेंगे उस बात को, हम तो उसको जान नहीं सकते। अब शास्त्र कहता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम लोग तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि भूतकाल में सृष्टि हुई थी, इसी तरह से सारा लोक जीवों से भरा था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, चल रहे थे, वर्तमान में भी है, आगे भी अनंत काल तक सृष्टि रहेगी। तो भगवान सबके ज्ञाता, यह भगवान की विमला शक्ति। और इसके बाद बता रहे हैं भगवान से उनकी है उत्कर्षिणी शक्ति। उत्कर्षिणी, उत्कर्ष का अर्थ होता है अग्रेसर, सबसे बढ़ करके सभी विषय में। तो भगवान की एक विशेषता है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी भाव में वे सबसे विलक्षण हैं, सर्वश्रेष्ठ। किसी भी विषय में उनके समान कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बढ़ करके होने की तो बात ही क्या है। नतत समस्या व्यधिक कुतुम्य। इसलिए हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि अर्जुन देख रहे हैं भगवान को कि सभी नमस्कार कर रहे हैं कृष्ण को, नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सारे सिद्ध समुदाय कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे थे सब लोग। भगवान उत्कर्षमय है, उत्कर्ष किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में सबसे बढ़ करके है। सौंदर्य में, धन में, बल में, ज्ञान में, जस में, वैराग्य में, सभी में वे अनंत हैं, सबसे बढ़ करके। भगवान सदा समस्त जीवों से और देवताओं से भिन्न हैं। तभी तक कोई कवि या विद्वान दूसरे के जस का वर्णन करता है जब तक उसे विष्णु के जस का पता नहीं हो गया। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में लिखा गया है कि एक बार जब पृथु महाराज प्रकट हुए बैन का शरीर मथने से, तो ऋषियों ने प्रेरित किया बंदी मागध और सूत गणों को कि आप लोग जस गाइए, जस गाइए इनका। तो जब ये लोग जस गाने के लिए तैयार हुए तो पृथु महाराज रोक दिए, रुको, हमारा क्या गुण इस संसार में प्रकट है कि तुम लोग हमारा गुण गाने जा रहे हो, तुम्हारी वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवाद जुगुप्सितम न स्तोयन्ति सभ्य। भगवान श्री कृष्ण का जस रहते हुए इस संसार में बुद्धिमान लोग दूसरे का जस नहीं गाते, दूसरा कोई जसस्वी है ही नहीं, पर वे भी तो भगवान थे। अतः मुनियों ने कहा कि सारा गुण भविष्यवाचक क्रिया में गाओ। तो बंदी मागत सूद कहने लगा कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, आप सनत कुमार से मिलेंगे, आप ऐसा यज्ञ करेंगे, आपके यज्ञ के घोड़ा को चुराएंगे इंद्र, तो आप उनको ऐसे दंड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अंत में आप बैकुंठ जाएंगे, आपके ऐसे ऐसे गुण होंगे। वे बोले, लेकिन महाराज पृथु का यह अमर संदेश विचारणीय है, ध्यान देने योग्य है कि विष्णु का गुण रहते हुए संसार में बुद्धिमान लोग दूसरे का गुण नहीं गाते, क्योंकि उनकी तुलना में और किसी में कुछ गुण है ही नहीं। और किसी में कोई गुण है तो भगवान का ही एक तेज, भगवान का सौंदर्य या भगवान का ज्ञान किसी व्यक्ति में प्रस्फुटित हो रहा है। जद जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत् तदेव गच्छत्वम मम तेजोंस संभव। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यदि किसी पुरुष में कुछ तेज है या कोई विभूति है, कोई विशेषता है, तो हमारे ही एक तेज के अंश के अंश के अंश के अंश से वो संभव है, ऐसा समझ। उस दृष्टि से भी वह भगवान की ही विशेषता है, तो भगवान का जस गाना चाहिए। क्यों गाया जाए, क्यों दूसरे के विषय में पुस्तकें लिखी जाए, भगवान के विषय में गाना चाहिए। भगवान का जस विख्यात है सब जगह, तो इसलिए बुद्धिमान लोग भगवान का जस गाते हैं, वही उत्कर्ष को प्राप्त। और शास्त्र कहता है क्या भगवान आज तक अपने समान भगवान बना दिए? भगवान किसी किसी विषय में लाचार हैं, लाचार इस विषय में है कि भगवान अपने समान दूसरा भगवान नहीं बना सकते हैं, ये उनके शक्ति के बाहर है, बस वही है अकेले, अपने समान दूसरा भगवान नहीं बना सकते, और शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते। दुर्वासा जी अम्बरीश जी का अपराध करके गए थे, इसीलिए थोड़ा हटाए, लेकिन अम्बरीश के शरण में भेजे भगवान, लेकिन बाकी भगवान में शक्ति है ही नहीं कि वे शरण में आए हुए को भगा दे कि नहीं जाओ हम नहीं रखेंगे शरण। इस विषय में भगवान परबस हैं, उनको शरण में रखना ही पड़ेगा। जो मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप दिन बंध पुकारे न जाएंगे। बिंदु जी कहते हैं उत्तर भारत में बहुत बड़े भक्त कवि हो गए हैं, यदि हमारे जैसा पापी नहीं उधारा जाएगा तो मैं आपका दीन बंधु नाम इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे जैसे जब दीन का उद्धार नहीं होगा तो आप दीन बंधु ऐसे सस्ते में कहलाएंगे। दीन बंधु नाम आपके सहस्र नाम से हटा दिया जाएगा, हम दीन बंधु नहीं, हमारा उद्धार कीजिए तब आपका दीन बंधु नाम रहेगा। वास्तव में प्रभु के श्री कृष्ण के विष्णु के जो गुण हैं वेदों में शास्त्रों में और महान से महान कवियों के मुख पर गुंजते रहते हैं, और इस वसुंधरा पर उड़ीसा की इस धरती पर देखिए श्रीधर स्वामी ने भगवान का गुण गाया है, उनका वह कमेंट उनका वह भास जुग जुग तक अमर रहेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे, सनातन गोस्वामी पढ़ते थे, जीव गोस्वामी उसको पढ़ते थे, और इसी भूमि पर जयदेव महाकवि ने जो भगवान का जस गाया है आज तक उसकी लीला की जा रही, इसको कहते हैं गुणगान। ये सब ग्रंथ अनंत काल तक अजर अमर रहेंगे, लेकिन जो दूसरे का गुण गाया जाता है वो अखबार की तरह जाएगा कूड़ा करकट में, उसकी कोई कीमत नहीं। भगवान के जस अमर, भगवान उत्कर्ष को प्राप्त, और उनका उत्कर्ष स्वरूपगत उत्कर्ष है। यहां उत्कर्ष शब्द से अर्थ है यश, भगवान यशस्वी है, नित्य ही यशमय, यह उनकी स्वरूप शक्ति है, कहने का अर्थ यह भगवान का स्वभाव है। विमला शब्द का मैं अर्थ किया अविद्या से भगवान परे हैं, परंतु उसका वास्तविक अर्थ हुआ कि भगवान में कभी भी अहंकार नहीं होता है कि मैं भोगता हूं मैं करता हूं, अविद्या नहीं आ सकती। और भगवान की एक शक्ति है ज्ञाना शक्ति, ज्ञाना शक्ति की व्याख्या मैं कर चुका ऑलरेडी। ज्ञाना शक्ति का अर्थ है कि भगवान नित्य ज्ञानमय है, कुछ भी अविदित उनसे नहीं। और विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया, क्रिया शक्ति, भगवान में कुछ करने की या सब कुछ करने की अन्यथा करने की नित्य अद्भुत शक्ति वर्तमान है, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति का अर्थ है कि किसी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति, या अनंत कलाएं भगवान में भरी पड़ी है। संस्कृत में क्रिया शब्द का अर्थ होता है कला। कौन ऐसा गुण है, कौन ऐसी कला है जिसमें भगवान प्रवीण नहीं है? जैसे वाद्य कला, अश्व संचालन कला, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे ब्रज में, तो बांसुरी सीखने के लिए किसी म्यूजिक कॉलेज में नहीं गए थे कि कुछ सीख लें तब बजाएं। वो गांव में गायों का चरवाहा लड़का वन में गया और बांसुरी उठाकर बजाने लगा, वह सारा विश्व मुग्ध हो गया, क्योंकि भगवान में सहज है सभी कलाएं, उत्पादन करने की क्षमता, डिजाइन गढ़ने की क्षमता, रंग बनाने की क्षमता। इस पृथ्वी में ही इतना रंग भर दिया है भगवान ने कि कितनी कितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं कितने रंग की। जैसे देखिए माला है, अब पृथ्वी से लाल रंग निकल रहा है और उसी के साथ पीला रंग निकलता है एक ही स्थान पर। एक बार गुलाब का पौधा रोपिए, लाल पीला सब खींच लाएगा, ये बसंती रंग खींच लाया है पृथ्वी से, उज्ज्वल रंग, कई प्रकार के रंग, कई प्रकार के स्वाद, कई प्रकार के आकार, ये सब भगवान की कृति है। इसको क्रिया शक्ति कहते हैं भगवान की। हम लोग क्या क्या बना पाएंगे यदि भगवान का रंग न लें और कोई कहे कि आप रंग बनाओ, लेकिन भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई किसी वस्तु को नहीं छूना, वो क्या बनाएंगे? कितना कितना डिजाइन, कितना कितना रंग, कितनी कितनी बड़ी बड़ी वस्तुएं आकाश में तैर रही है। छोटी से छोटी वस्तु भगवान बनाए हैं और बड़ी से बड़ी वस्तु। बड़ी से बड़ी वस्तु में पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, समुद्र, और छोटी छोटी वस्तु में जैसे मच्छर, चींटी, क्या क्या। मच्छर जो है मशक, वह भी एक विमान की तरह है, छोटा विमान है, और उसमें सीटी भी है, लाइट भी है, सब कुछ है, और बिना एयरपोर्ट के उतर जाता है, कहीं भी उतर सकता है। क्या मनुष्य इतना छोटा विमान बना सकता है? जैसे कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार उड़े, बैठ जाए, और इतना निर्भय विमान है कि वह राष्ट्रपति के सिर पर भी बैठ सकता है, और खास करके बंगाल में जो मच्छरों की राजधानी है, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन मच्छर उसके सिर पर बैठने में और उसका खून खींचने में संकोच नहीं करेगा। ये भगवान की सृष्टि देखी, छोटी से छोटी चीज बनाए और सूर्य जैसा बड़ा विमान भी बनाए। इसको क्रिया शक्ति कहते हैं, कुशलता, निपुणता, किसी भी विषय में दक्ष। मनुष्य विद्युत बनाया है, बल्ब, लालटर्न और गैस, क्या क्या। अगर दुनिया में सारे दीपक को जोड़ा जाए कितने होंगे, ये कोटि कोटि बल्ब, कोटि कोटि दीपक हो जाएंगे, फिर भी रात नहीं जाती है। रात में अंधकार ज्यों का त्यों रह जाता है। इतना मनुष्य अपने को एडवांस मान रहा है, और कहीं मान लीजिए बिजली जला दिया बल्ब और एक किलोमीटर में प्रकाश चला गया तो कहता है वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया है, कितना बड़ा बल्ब जला दिया। और ये कितना एक बल्ब जला है ना, सूरज नामक एक बल्ब जल रहा और पूरा विश्व आलोकित। क्या इसको देख करके विष्णु को नमस्कार नहीं करना चाहिए? बताइए, इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। और वहां तक कोई पेट्रोल नहीं पहुंचाया जा रहा है, बिजली के खंभे नहीं खींच करके वहां तक ले गए, कोई कनेक्शन नहीं है, स्थिति एक समान है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के बाद तेल घट जाएगा, सूरज ठंडा हो जाएगा। आजकल के मूर्ख लोग, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सूरज ठंडा हो रहा है, कुछ उपाय करना पड़ेगा, कहीं सूरज ठंडा हो गया तो प्रकाश और ताप की व्यवस्था कौन करेगा, ठंडा हो रहा है। ठंडा तुम्हारा दिमाग है कि सूरज ठंडा हो रहा है? एक बार वैज्ञानिकों ने खूब ऐसा कहा था, मैं एक पत्रिका में पढ़ा था, सूरज ठंडा हो रहा है, एक दिन संसार में केवल बर्फ जम जाएगा, आइस जम जाएगा, तो उसके ठीक एक वर्ष के बाद ही बहुत गर्मी पड़ी। और दिल्ली में लोग बता रहे थे कि 37 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी गर्मी पड़ी थी, कितने लोग गर्मी से मर गए थे। और वो गर्मी अभी 2 वर्ष पहले की बात, 5 दिन गर्मी, 4 दिन खूब पड़ी थी, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बहुत कठिन गर्मी पड़ी। तब उस समय हमारे मन में जिज्ञासा उठी थी कि ये क्या हो रहा है, सूरज ठंडा हो रहा था ये लोग कहीं पेट्रोल फेंक दिए क्या कि बढ़ गई गर्मी, ये क्या हो गया। उस समय हाय 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 ये कर रहे थे, इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई। उस पर क्या कहते हैं कि इतना पेट्रोल जल रहा है, इतनी मोटर गाड़ियां चल रही, इसीलिए गर्मी बढ़ रही है। गर्मी इसके चलते नहीं बढ़ी थी, या विस्फोट किया गया, कोई परीक्षण किया गया बम का, इसलिए गर्मी बढ़ गई। विपक्ष वाले यही हल्ला कर रहे थे कि ये बम विस्फोट हुआ है इसके लिए गर्मी बढ़ गई है, ये हो गया। लेकिन वो गर्मी बढ़ी थी सूरज के कारण, और सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, शास्त्र कहता है। और प्रलय काल में तो 100 गुना ताप बढ़ाया जाएगा संसार को जलाने के लिए। सूरज रहेगा एक ही रहेगा, लेकिन उसकी 100 गुनी शक्ति बढ़ाई जाएगी। और ये लोग कहते हैं कि सूरज ठंडा होने जा रहा है ऐसा बोलते हैं। भगवान की कला को देखिए, एक दीपक के द्वारा संपूर्ण विश्व का अंधकार विनष्ट कर रहे हैं, इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। क्या कोई बुद्धि लगाएगा भगवान के सामने, पूर्ण है भगवान, सब तरह से कुशल है किसी भी वस्तु में। और शक्ति है योगा, योगा योग का अर्थ होता है उपाय। भगवान के लिए कोई भी उपाय कर लेना किसी भी परिस्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है, इसको योगा कहते हैं, योगा शक्ति। आजकल योगा का मतलब ये व्यायाम कसरत इसको लोग समझते हैं, अचिंत अद्भुत कार्य करने की शक्तियां योगा। ब्रज में वर्षा हो रही थी, मूसलधार आंधी चल रहा था, तूफान आ गया था, सब ब्रजवासी रो रहे थे कैसे जिए। भगवान ने पर्वत उठा करके छत्र बना लिया, कहा कि आओ इसी के अंदर। लोग आ नहीं रहे थे तो कृष्ण कहते हैं आप भय मत कीजिए, मेरे हाथ से पर्वत गिरेगा नहीं, आप भय मत कीजिए, आ जाइए। सब आ गए, वन में आग लगी थी, भगवान पी गए आग को। 2 बार आग लगी थी वृंदावन में, दवानल जंगल में फैली हुई आग को कृष्ण पी गए, किशोर अवस्था, बच्चा थे भगवान और उसमें पी गए। क्या कोई है ऐसा कहीं आग लगे और पी जाए मुंह में? एक दो मिनिस्टर ऐसे आग पीने वाले हो जाएं तो अग्नि विभाग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनको ही जल्दी बुला करके कहा जाए कि पी लीजिए, आग को पी लीजिए। अरे आदमी क्या आग को पिएगा, ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पी सकता है, बीड़ी पी सकता है, और क्या पिएगा वो, चाहे गर्म चाय भर पी सकता है और क्या वो आग पिएगा। नहीं, भगवान तो आग पी गए, एक बार बच्चों के आंख के सामने और एक बार आंख बंद करवा कर पी गए। वृंदावन में ये फायर विभाग, अग्निशामक विभाग, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, भगवान सब विभाग हैं। इसको कहते हैं योगा, उपाय, अद्भुत योग जानते हैं। योग शक्ति यह भी है कि 1 से 2 हो जाना, भगवान तो 1 से 2 नहीं, 1 से तो 16,000 हो गए थे। 16,108 स्त्रियों के साथ भगवान एक एक रूप से रहते थे, यह है भगवान की योग शक्ति, अनंत अद्भुत। और एक शक्ति बता रहे हैं प्रहवी, प्रहवी का अर्थ होता है नम्रता शक्ति। भगवान सब विषय में सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, लेकिन भगवान सदा नम्र रहते हैं, उनमें कभी अहंकार नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं आता है, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं। भगवान इस तरह के सारा धन बल ज्ञान जस वैराग्य होते हुए भी भगवान नम्र रहते हैं सदा, कभी बड़प्पन नहीं आया भगवान में, भावना नहीं आई कि मैं बड़ा। देखिए सरस्वती नदी के तट पर कुछ मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उन लोगों में आपस में विवाद छिड़ा कि ब्रह्मा शिव और भगवान में कौन बड़ा है, विष्णु भगवान में कौन बड़ा, उसकी हम लोग आराधना करना चाहते हैं। तो ऋषियों में अधिकांश मत तो था कि भगवान विष्णु बड़े हैं सभी विषय में, परंतु भाई एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए, ऋषियों ने सोचा कि जगत का संशय मिट जाए, इसके लिए भृगु जी को परीक्षक बना करके भेजा। भृगु जी वहीं बैठे थे, उनको कहा कि आप तीनों की परीक्षा लेकर के आइए और बताइए कि कौन बड़ा है। तो भृगु जी ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं परीक्षा लेते हैं। तो सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के लोक में गए, सत्य लोक में, वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। परीक्षा लेने के लिए भृगु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने देखना चाहा कि इनमें कितना धीरज है कितना आक्रोध है। जिसमें धैर्य हो पूर्ण हो व्यक्ति तो दूसरे की अपेक्षा क्या करेगा, अगर पूर्ण है आनंद में है तो दूसरा प्रणाम कर रहा है या नहीं कर रहा है चाहे गाली दे रहा है उससे वो उबेगा नहीं। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति अरबों खरबों रुपया रखा है, वो आने वाला एक व्यक्ति उसको दो रुपया न दे तो उसे वो क्षुब्ध थोड़े होगा, सोचेगा हमारे पास तो अनंत धन है क्या इसकी अपेक्षा। तो गए ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या हो गया, पागल हो गया क्या लड़का, ये प्रत्येक बार आता था तो प्रणाम करता था, इसको क्या हो गया। उनको बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ, लेकिन बाद में यह अज्ञान आया क्या करें, अगर अपने पुत्र को डांटते हैं तो हल्ला होगा कि पुत्र को आपने ट्रेनिंग नहीं दिया था सिखाया नहीं था, ये मेरी ही कमी मानी जाएगी। तो मोह आ गया, तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप सोचे कि एकांत में समझा दूंगा, इस समय कुछ कहना ठीक नहीं है, पर क्रोध तो हो ही गया और उनकी परीक्षा हो गई। पता लग गया कि ब्रह्मा जी कितना पानी में है, अब उनकी परीक्षा हो गई। इसके बाद भृगु जी गए कैलाश, तो भगवान शिव देखे कि भृगु जी आ रहे हैं तो आसन से खड़े हो गए, क्योंकि ये भाई हैं भृगु जी, उनके ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शिव जी, पद में बड़े हैं लेकिन संबंध में पुत्र हैं ब्रह्मा जी। भाई देखे हमारे भाई आए हैं बहुत दिनों के बाद हमारे घर, उठ करके पहले तो चले उनसे आलिंगन करने, भाई थे, वैसे बाह पसार करके भगवान शिव आलिंगन करना चाहते थे, तब तक भृगु जी ने कहा चल हट, अपनी वेशभूषा नहीं देखता है आ रहा है छूने के लिए, ये मुंडमाल लगाया है, चीता की राख लगाया है, सांप लगाया है, हड्डी ये सब, कभी स्नान करना ना कभी कुछ करना, चलो हटो। उनको तो परीक्षा लेनी थी, अब इतना सुनना था कि भगवान शिव तो ऐसे ही तमोगुण को कंट्रोल करके रखते हैं, और उनको इतना क्रोध हुआ कि उठाए त्रिशूल और चले जान मारने के लिए, वध करने के लिए चले, किसका भाई का अपने। अरे भाई है, एक दो बात कठोर ही बोल दिया तो क्या हो गया, जान मार देंगे, चले एकदम मारने के लिए वध करने के लिए चले। तब तक तो पार्वती जी ने पैर पकड़ लिया कि तो बहुत बड़ा अपजस छाएगा ये होगा, वो पैर पकड़ लेके छोड़ दीजिए आपके भाई है गलती हो गई, जान मत मारिए जान मत मारिए, तब जा करके अपने वाइफ की बात मान करके चुप हो अपने पत्नी की बात से भगवान शिव सोचे ठीक है अभी कहती है तो, या इतना क्रोध हो गए। अब भृगु जी चले बैकुंठ भगवान की परीक्षा लेने, ये भागवत की कथा है दशम स्कंध की। वहां पहुंचे तो भगवान लेटे थे शेष सज्जा पर, और भृगु जी जाते ही देखिए प्रश्न पत्र भी कितना कड़ा कर रहे हैं जाते ही पैर से छाती पर मारे वक्षस्थल पर, कहे आलसी कहीं के हमेशा सोए ही रहते हो। इतना इस ब्राह्मण का दुस्साहस देखिए, यदि भगवान चाहते तो इसकी टांग पकड़ करके ऐसा फेंकते कि पता भी नहीं चलता कहां गया, लेकिन भगवान की नम्रता देखिए और भगवान का धैर्य। भगवान तुरंत आसन से बैठ गए नीचे और भृगु जी को उस आसन पर बैठाए, आसन पर बैठा करके और भृगु जी के चरण को सहलाने लगे। भगवान कहते हैं आपके चरण कमल अत्यंत सुकुमार हैं, मेरा वक्षस्थल बहुत कड़ा है, आपको चोट लग गई होगी, यदि आपके आने की सूचना मुझे पहले मिली होती तो मैं आपका स्वागत किया होता, आप अकस्मात आए इसी समय स्वागत नहीं कर सका, मुझे क्षमा करेंगे, आपको चोट लगी है। और इतना सुनना था कि भृगु जी के आंखों में आंसू उमड़ आए और वे तो अपनी करनी पर पछताने लगे कि मैंने यह क्यों किया, लेकिन भगवान की यह महिमा, भगवान का यह धैर्य और उनकी नम्रता देखकर गदगद हो गए और आकर के उन्होंने यथावत सारी कथा ऋषियों को सुना दिया, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, मैं तो बहुत भाग्य से कैलाश से बच गया, नहीं तो मरना निश्चित, परीक्षा लेने में ही समाप्त हो गया होता। तब से ऋषियों ने सब ने एक स्वर से स्वीकार कर लिया कि वास्तव में विष्णु ही परम ईश्वर हैं, भगवान है, सब तरह से परिपूर्ण है, भगवान नम्र है। और आज तक भृगु जी के चरण को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। एक साधु एक बार कथा कह रहे थे, उस ब्राह्मण का चरण बहुत कठोर था भृगु का, ऐसा मारा कि भगवान के छाती पर चिन्ह बन गए। ऐसा भृगु पद चिन्ह धारण करते हैं। यह बात नहीं है कि भृगु जी मारे थे कस करके, नहीं मारे थे, हल्का मारे, लेकिन भगवान अपने वक्षस्थल पर ब्राह्मण के पद चिन्ह धारण करते हैं, तो भगवान के लिए वह भी एक कीर्ति हो गई, क्योंकि भगवान का धैर्य, उनकी पूर्णता, उनका गंभीरता और उनकी नम्रता की गाथा वो चरण चिन्ह गाता रहता है। जैसे भगवान शिव के कंठ में नीलापन हो जाना भगवान शिव की कीर्ति को ही प्रसारित करता है, उसी तरह भृगु पद चिन्ह भगवान के ब्रह्मण्यत्व को प्रकट करता रहता है। ये परीक्षा हो गई, इसको कहते हैं प्रहवी शक्ति, सहन करना। दो प्रकार का सहन होता है, एक तो वैभव पा करके फूल न जाना, मतलब घमंड में न हो जाना, ये सहन करना, ये सहन शक्ति है, और दूसरा है संकट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर फिर सुख न जाना। भगवान सदा पूर्ण है, सारी दुनिया उनको नमस्कार करे पूजा करे इससे भगवान का कुछ बनने वाला नहीं है, और सब लोग तिरस्कार करें गाली दें यहां तक निराकार भी कहें फिर भी भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। इस संसार में तो पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए, आदमी अपने को बड़ा मानता है या अपने को दुखी मानता है, भगवान ने प्रहवी शक्ति। और भगवान की सातवीं शक्ति है सत्या, सत्या, सत्या का अर्थ है कि जो भी गुण है, जो भी विशेषता भगवान की है वे तीनों काल में रहेंगे, सदा से हैं, सदा रहेंगे, इसको सत्य कहते हैं, सब कुछ। और ईशाना, ईशाना का अर्थ है भगवान सदा ईश्वर रहेंगे, सदा कंट्रोलिंग पावर उनका रहेगा, वे ईश्वर पद पर ही रहेंगे, वो उनके लिए पद नहीं है, सदा स्वामी रहेंगे, सदा जगन्नाथ जी जगन्नाथ रहेंगे। हाथ पूरा नहीं है फिर भी जगन्नाथ है, देखिए यही तो ईश्वर का कमाल है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ऐसे हाथ किए हैं वो आलिंगन करने के लिए बुला रहे हैं कि आओ आओ, भगवान हाथ ऐसे किए, ये भगवान की लीला है जो
सर्व विख्यात है। ईशाना शक्ति, कंट्रोलिंग पावर भगवान पर स्वाभाविक ही है। कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई चुन करके मालिक बना दिया है या कुछ वैष्णवों ने कह दिया है जगन्नाथ जगन्नाथ इसलिए जगन्नाथ हो गए। नहीं, वे जगन्नाथ पहले से ही हैं और रहेंगे। ऐसा मत समझिए किसी ने नाम दे दिया, किसी ने पद दे दिया या 5 साल के लिए चुन करके जगन्नाथ बना दिया, ऐसा नहीं। वो सदा से जगन्नाथ हैं और रहेंगे। इतने जगत में जीव जन्मेंगे मरेंगे लेकिन भगवान जैसे के तैसे रहे। और अंतिम जो सबसे महान शक्ति भगवान की है यह कि वे कृपामय है, अनुग्रहमय, अनुग्रह उनकी शक्ति। सदा नख से सिख तक भगवान में कृपा के अलावा और कुछ नहीं। भागवत में ऐसा कहा गया है कि समस्त देवताओं की कृपा को यदि एक जगह एकत्रित किया जाए, सारे देवताओं की कृपा, माता पिता की कृपा और समस्त गुरुओं की कृपा को यदि एक जगह कीजिए और भगवान की कृपा एक तरफ, तो भगवान की कृपा एक अनंत सागर की तरह होगी और सबकी कंबाइन कृपा एक सीकर के बराबर भी नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र कहता है। सीकर का अर्थ होता है सीक से बना हुआ जल कण, विप्रुष, बिंदु। जैसे आप देखते हैं सीक, नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष होता है और उसका पत्ता को पकड़ने वाला डंठल होता है पतला, जैसे ये है, इसको सीक मान लीजिए कहेंगे। और इसको किसी गिलास में या लोटा में बोर करके और ऐसे छिड़केंगे तो इसकी जितनी सूक्ष्म बूंदे बनेंगी उनको सीकर कहते हैं। तो सभी गुरुओं की, देवताओं की और माता पिता की कंबाइंड कृपा एक सीकर के बराबर भी नहीं है भगवान के कृपा सुधा सिंधु के सामने। इतने कृपालु हैं प्रभु, मूर्त कृपा मई है। भगवान की कृपा से तुलना ही नहीं की जा सकती कभी। यह भगवान की शक्ति है, भगवान का स्वरूप है। वे अनंत काल तक कृपा से ही परिपूर्ण रहेंगे। कभी जीवों के प्रति उनकी उपेक्षा बुद्धि नहीं होती है, कभी किसी को पराया नहीं मानते। इतना प्रयास करके भगवान जगत की सृष्टि किए हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उनमें कृपा भरी पड़ी है और विशेष करके अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा रहती है, उन्हें अपना मानते हैं। गलती या त्रुटि, विच्युति जो कुछ भी होती है जीव के तरफ से होती है, जगन्नाथ जी के तरफ से नहीं होती। गुण तुम्हार समझाई निज दोषा, जही सब भात तुम्हार भरोसा। भगवान में कभी भी आक्रोश, क्रोध, द्वेष आ ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार संभव नहीं है, वैसे भगवान में द्वेष या क्रोध संभव ही नहीं। यह उनकी नित्य शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। भगवान कृपा से दूर हो नहीं सकते। जैसे चंद्रमा में धवलता है, दूध में धवलता होती है, तो दूध से धवलता को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से दाहिका शक्ति को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान से भगवान की कृपा को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान के स्वरूप का प्रकाश है कृपा, और क्या कृपा करेगा कोई। मनुष्य की कृपा वास्तव में एक सीकर से भी कम होती है, देख सकते हैं। कोई मान लीजिए पिता है, अपने पुत्र का पालन कर रहा है, कृपा करता है, माता पिता कृपा करते हैं, लेकिन जब बच्चा सयाना हो जाता है और प्रतिदान नहीं देता तो वही उस पर क्रोध किए रहते हैं। माता पिता का स्नेह दूर हो जाता है, क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और भी कई जगह कई उदाहरण हैं इसके, सब समय कृपा बनी नहीं रहती।
मन उब जाता है। कभी कभी तो लोग कहते अब कितना कृपा करे आखिर कृपा का स्टॉक है ही नहीं तो करेगा क्या, और कृपा करे भी मान लीजिए एक सीकर भर कृपा किया भी तो उसकी कृपा से होगा क्या, क्या होगा? कोई दुनिया के सारे माता पिता मिल जाए, सारे गुरु मिल जाए, किसी एक जीव को कहे कि हम मरने नहीं देंगे इसको, तो कृपा करने से क्या होगा, वो मर ही जाएगा। कुछ भी हो कर्मबंधन नहीं बदल सकते, उसकी गतिविधि नहीं बदल सकते, उसका भाग भविष्य नहीं बदल सकते, कृपा करके भी क्या करेंगे। इसीलिए भगवान कृपामय है। भगवान के अनंत विशेषताओं में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि श्री कृष्ण या विष्णु कृपामय है, इसी से प्रभु की शरण लेनी चाहिए। और इस बात को कौन कह रहा है, इस विश्वेश्वर कह रहे हैं। इस प्राकृत जगत के प्रैक्टिकली जो ईश्वर हैं महादेव जी, वे कह रहे हैं कि आप में नौ शक्तियां हैं और वैष्णव जन आपके भक्त जन नौ शक्ति से युक्त आपको परम ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो यह है भगवान का पूर्ण ज्ञान। इतना कह करके भगवान शिव कहते हैं नाहम, मैं आपके द्वारा रचे हुए इस विश्व को भी पूरा पूरा नहीं जानता हूं, आपको जानने की बात तो बहुत दूर है। न अहम न परायु, परायु का अर्थ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की सबसे लंबी आयु है इसीलिए उनको पर आयु कहते हैं, या पर का अर्थ है परार्ध सब। ब्रह्मा जी द्विपरार्ध तक जीवित रहते हैं, द्विपरार्ध का कैलकुलेशन किया गया है 1,54,40,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। अब तो मिलियन ट्रिलियन बिलियन में क्या क्या गणना होती है, लेकिन वैदिक गणना है 1,54,40,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं, प्रकट रहते हैं, इसके बाद वो तिरोहित हो जाते हैं। इस अवधि को द्विपरार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी की सबसे लंबी आयु है। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं और लंबी आयु वाले श्री ब्रह्मा और अन्य ऋषिजन जिनमें मरीचि मुख्य हैं, आपके द्वारा बनाए हुए इस प्राकृत प्रपंच के भी विषय में पूरा पूरा नहीं जानते। जन माया मोहित चेतस इस दैत्य मर्त्या दया किमुत शश्वत भद्रवृत्त। जब देवता भी नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, तो फिर दैत्य और मनुष्य क्या जानेंगे, इनका तो आचरण सदा अभद्र होता है। दैत्यों के साथ मनुष्यों को रखा जा रहा है। जब देवता नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि नहीं जानते हैं भगवान को या भगवान की बनाई हुई सृष्टि को, तो मनुष्य और दैत्य कैसे जानेंगे, क्योंकि वो तो सदा तमोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, अभद्र वृत्त है। सत्वगुण में रहने वाले जीव भी नहीं जानते। तो आप इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, भूते हितम च जगतो भवबंध मोक्ष, आप ही जीवों को भवबंधन में डालते हैं या भवबंधन से मुक्त करते हैं। आपकी जो भी चेष्टा है वो जीवों के हित के लिए है। भूत इहितम, भूते हितम, जीवों के लिए ही आप चेष्टा करते हैं, सृष्टि करते हैं। और जैसे वायु सर्वत्र प्रवेश करता है, उसी प्रकार आप चर अचर सब जगह प्रविष्ट हैं और सबके विषय में जानते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपके घर किस लिए आया हूं, आप सब कुछ जानते हैं, वायु की तरह सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। मैं किस लिए आया हूं, किस अभिप्राय से, आप जानते हैं, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तो भगवान ने कहा कि फिर भी आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तब भगवान शंकर कहते हैं अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोहम तद्रष्टुम इच्छामि जत्ते जोषित बपुर्धृतम्। हे प्रभो, आज तक इस प्राकृत जगत में जितने भी आपके अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, परशुराम आदि जो भी अवतार हुए, हमने सबका दर्शन किया। आपकी ऐसी दया रही कि आपके सारे अवतार हमारे दृष्टिगोचर हुए, आपने दिखाया हमको। लेकिन अभी अभी जो अवतार हुआ, आपका योषित अवतार, स्त्री अवतार, अब तक हमने ऐसा अवतार नहीं सुना था। देखने की बात तो दूर रही। जो भी अवतार आपने लिया, पुरुषावतार लिया, वराह का हो, चंद्रसिंह का हो, वामन देव का, सब पुरुष अवतार लिए, लेकिन स्त्री का अवतार तो ये प्रथम बार हमने सुना, तो उसको हमें देखने की बड़ी लालसा। सो हम तद दृष्टुम इच्छामि, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं, और यदि आप समझते हो कि मैं उसे देख सकता हूं तो कृपा करके हमको वो दिखाइए। मानो भगवान थोड़ा अनभिज्ञता जैसे प्रकट करते हैं, कब कैसा रूप? तब ये कहते हैं, जिस रूप से दैत्य मोहित हुए और देवताओं को अमृत पिलाया गया, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। तो अमृत पिलाने के समय जो मूड था वो भी मैं देखना चाहता हूं, और असुरों को जैसे मोहित किए आप, कैसा हाव भाव, कटाक्ष संचालन, कैसा वस्त्र, कैसी वेशभूषा, मुख्य उसी को देखना चाहता हूं। जिन्न सम्मोहिता दैत्य, तो उसको मैं देखना चाहता हूं, कृपा करके दिखाई। और हम, मैं अकेले ही नहीं हूं, हमारे साथ पूरा समाज आया है, बेचारे सब ललायित हैं आपको देखने के लिए। आश्चर्य है कि इस रूप को शिव जी क्यों देखना चाहते। भगवान को देख ही रहे हैं तो संतुष्ट होकर चले जाना चाहिए। वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माया का बल दिखाना चाहते थे संसार को, शिव जी को मोहित करना चाहते थे, इसीलिए शिव जी के हृदय में इच्छा हो रही थी। ये प्रसंग शाम को आएगा, भगवान किस प्रकार रूप दिखाए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।